राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन वास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
श्रीमते भक्ति वे ಹೇಳು ಪ್ರಾಯ
ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ
ಆ Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Ah Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Oh, Shila Prabhupada
Prabhupada Prabhupada Prabhupada Shila Prabhupada
Prabhupada Prabhupada Prabhupada Shila Prabhupada
Prabhupada Prabhupada Prabhupada Shila Prabhupada
वीक्षांतराकोश परिच्छदासिव
वीक्षांतराकोश परिच्छदासिव
वर स्त्रियं तत्प्रभयाच घर्षते
वर स्त्रियं तत्प्रभयाच घर्षते
निरीक्षमाणे जननीरतिष्ठताम्
निरीक्षमाणे जननीरतिष्ठताम्
तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ
घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ
गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत
गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत
प्राणे समं रोषसमन्वितोऽपि वत्
प्राणे समं रोषसमन्वितोऽपि वत्
सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी
सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी
निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि
निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि
विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः
नेत्रे चरणो भुजो मुहुः
प्रसवेन गात्राक्षिपतिरुरोदः
प्रसवेन गात्राक्षिपतिरुरोदः
तस्यास्वनेनातिगभीररंहसा साद्रीर्महीगोश्चचालसग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुक्षितो व्रजनिपातशङ्कया निशाचरितं व्यतितास्तनाव्यसु व्यादाय केषां शरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृद्ध इवापतनृपन् नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने वाली भगवत कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य जीवन के पांच पुरुषार्थ माने गए हैं। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, प्रायः इस संसार के लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। परंतु मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ जिसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है वह कृष्ण प्रेम। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना यही है मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ। क्योंकि जब तक भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तब तक यह जीवात्मा सुखी नहीं हो सकता है। प्रायः संसार के लोग अपने दुख का कारण ढूंढते रहते हैं और सोचते हैं कि यदि मैं धन से प्रेम करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, पत्नी से प्रेम करने से सुखी हो जाऊंगा, पुत्र से प्रेम करने से सुखी हो जाऊंगा, समाज से प्रेम करने से सुखी हो जाऊंगा या देश से प्रेम करने से सुखी हो जाऊंगा। ये सब से प्रेम करने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम करना जीव का स्वभाव है, आत्मा का मूलभूत स्वभाव है प्रेम करना। आत्मा प्रेम करना चाहती है, आत्मा का भोजन है प्रेम। परंतु इस भौतिक जगत में प्रेम करने योग्य आत्मा के लिए कोई वस्तु नहीं है। अज्ञान के कारण जीव इस भौतिक जगत की सांसारिक वस्तु से प्रेम कर बैठता है, परंतु सांसारिक वस्तु से प्रेम मात्र दुख प्रकट करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलः अधःशाखा 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में, ये जो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की तीन मुख्य शक्ति संबित, संधिनी और हलादिनी, उनमें हलादिनी शक्ति जो है वो भगवान को आनंद देने वाली है। आध्यात्मिक जगत में भगवान से प्रेम करने वाली हलादिनी शक्ति भगवान को आनंद देती है और हलादिनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। आध्यात्मिक जगत में राधा और कृष्ण का प्रेम, नायक और नायिका का प्रेम सुख उत्पन्न करता है, आह्लाद उत्पन्न करता है। देखिए रूप गोस्वामी भक्तेश्यामृत सिंधु में इस सिद्धांत का वर्णन करते हैं, हम बहुत 10 साल पहले इसको पढ़े थे, आज आप सब भक्तों की कृपा से याद आ रहा है। आध्यात्मिक जगत में नायक और नायिका का जो प्रेम होता है उस प्रेम से सुख मिलता है, परंतु ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। जैसे आप गंगा में स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाते हो, आज जरा आप देखिएगा नदी के तट पर यदि कोई वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर आप देखेंगे, वृक्ष के ऊपर फल जितना ऊपर दिखता है नदी में वह फल उतना नीचे दिखता है। बात समझ में आ रही है? नदी के ऊपर वह फल जितना ऊपर होता है नदी में वो उतना नीचे होता है। इसका अर्थ है कि नदी के ऊपर जो है उससे बिल्कुल विरुद्ध नदी में होता है। वैसे ही भगवान के धाम में जो प्रेम करने से सुख मिलता है उससे बिल्कुल विरुद्ध इस भौतिक जगत में प्रेम करने से दुख मिलता है। सिद्धांत, इसे कहते हैं सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत को समझकर ही हम भक्ति में स्थित रह सकते हैं। कई भक्तों की इच्छा होती है कि केवल लीला सुने, कथा सुने, परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बलिया चित न करे आलस, यह है तिलागी श्रुति सुदृढ़ मानस। सिद्धांत सुनने में आलस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत ही हमें भक्ति में टिकाए रखते हैं। कथा भी जरूरी है परंतु सिद्धांत जानने चाहिए। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि एक गांव में रहने वाला बालक और एक शहर में रहने वाला बालक, गांव में रहने वाला बालक जानता है कि एक बीज को जमीन में डालकर कैसे उगाया जाता है, और शहर में रहने वाला बालक भी जानता है एक बीज को जमीन में डालकर उसको उगाया जाता है। ये गांव में रहने वाला बालक जो है दूसरों का देखकर वह बीज को उगाता है, परंतु शहर में रहने वाला बालक साइंस पढ़कर विज्ञान पढ़कर वह जानता है कैसे बोना है क्या करना है। परंतु मानो गांव में रहने वाले बालक को कहा जाए कि देखो ये पौधा तुम उगा रहे हो उसके जड़ में पानी मत डालो, यदि उसकी डाली में पानी डालोगे तो वो पौधा अच्छा उगेगा, तब बालक तो कुछ जानता नहीं है, गांव में रहने वाला कहेगा ठीक से ठीक है मैं कल से डाली में पानी डालूंगा। परंतु यही बात शहर में रहने वाले बालक को कहा जाए कि डाली में पानी डालो ये पौधा अच्छा उगेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है साइंस पढ़ा है इसलिए कहेगा नहीं, पानी जड़ में डाला जाता है और जड़ से मूल से वो पानी ग्रहण करता है फिर डाली में जाता है पत्ते में जाता है, इसलिए पानी डाली में नहीं पानी जड़ में डाला जाता है क्योंकि पढ़ा लिखा है। ठीक उसी प्रकार जो लोग सिद्धांत पढ़े हैं, संसार में कभी माया का प्रभाव हो जाए, कोई डिबेट करने के लिए आ जाए, कोई तर्क करने के लिए आ जाए, परंतु सिद्धांत यदि पता है तो आप भक्ति में अड़ग रह सकते हो, स्थिर रह सकते हैं। और यदि केवल कथा सुनते हैं और सिद्धांत नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि पतन हो जाए आगे चलकर, ठकर रहो। इसलिए कथा के साथ साथ सिद्धांत, आचार्यों की कृपा है कि इस कथा में पूतना वध की कथा में शने शने बहुत सुंदर सिद्धांत भी दिए हैं। तो उर्ध्व मूल पद शाखा, भगवान के दाम में नायक नायिका का जो प्रेम है वह सुख उत्पन्न करता है, परंतु यह भौतिक जगत भगवान के दाम से बिल्कुल उल्टा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई नायक नायिका प्रेम करेंगे तो प्रेम से मात्र दुख उत्पन्न होगा, सुख नहीं। तो जीव का स्वभाव है प्रेम करना, और यह जीव भौतिक जगत के किसी भी व्यक्ति से या वस्तु से प्रेम करता है तो मात्र दुख पाता है। इसलिए प्रेम करने योग्य एकमात्र कृष्ण है, कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। आप कहेंगे कृष्ण से ही प्रेम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम करने योग्य है और कृष्ण सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सभी रसों के राज हैं, क्योंकि सबका प्रेम समान नहीं होता है। कुछ लोग साख्य भाव से प्रेम करना चाहते हैं, कुछ लोग दास्य भाव से, कुछ माधुर्य भाव से, कुछ वात्सल्य भाव से। कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी भाव में सबका प्रेम स्वीकार कर सकते हैं। अन्य कृष्ण के अवतार में भी यह सामर्थ्यता नहीं है, यद्यपि अन्य जितने भी अवतार हैं कृष्ण के ही अवतार, परंतु कृष्ण के अवतार में भी सभी रसों में प्रेम करने की सामर्थ्यता नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र को ऋषि मुनियों ने कहा था और कई नगर की नारियों ने कहा था कि हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र ने कह दिया एक पत्नी व्रत धर। भगवान राम का एक नियम था, एक वचन एक बाण और एक स्त्री एक पत्नी। भगवान राम ने कहा कि द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आऊंगा, तो आप सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। नरसिंह देव के साथ कोई माधुर्य भाव का आस्वादन कर सकता है? यद्यपि कृष्ण के ही अवतार हैं, परंतु कोई विचार करे कि नरसिंह भगवान के साथ रासलीला खेलेंगे तो हो नहीं सकता है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, उग्र रूप धारण किए थे, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्ह, प्रहलादेश जय पद्म जय मुख पद्म भृंगम, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतो मुखम, नरसिम्हा भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्यु नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णु, महाविष्णु ने उग्र स्वरूप धारण किया, और जब नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया तो जितनी जितनी बार भगवान के अवतार हुए हैं उतनी उतनी बार देवतागण आकाश से फूल की वृष्टि करते हैं, भगवान को हार माला पहनाते हैं। नरसिंहदेव भगवान ने जब जन्म लिया सभी देवता आए, परंतु नरसिंह भगवान के स्वरूप को देखकर कांप गए, अद्भुत स्वरूप। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उसका वर्णन शास्त्र में पहले से होता है, परंतु नरसिंह भगवान का वर्णन नहीं था क्योंकि अचानक अवतार हुआ। तो शास्त्र में लिखा है कि ये माता के घर पे ये पिता के पुत्र बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, परंतु यहाँ प्रहलाद ने कह दिया खंभे में मेरे भगवान है, तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सबायाम न मृगम न मानुषम। खंभे को ही अपने माता पिता बनाकर भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए और दिखा दिया इस संसार के उस मूर्खों को कि मैं मेरे भक्तों का वचन सत्य करता हूं। और जो लोग कहते हैं कि ये पत्थर को क्या पूजना, प्राय एक ऐसा संप्रदाय है निराकार को मानते हैं, पत्थर को क्या पूजना। भगवान नरसिंहदेव ने दिखा दिया यदि श्रद्धा है भक्ति है प्रेम है तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो जाता हूं। और उस समय सभी देवता नरसिंह भगवान को देखकर कांप गए। भागवत में वर्णन है भगवान नरसिंह देव बैठे बैठे आकाश में इस तरफ देखते थे, देवता यहां से यहां आ जाते थे, यहां देखते थे तो यहां से यहां, नरसिंह देव के बाल से बादल बिखर जाते थे। नरसिंह देव भगवान जब चलने लगे तो ये धरणी कांपने लगी, और सुखदेव गोस्वामी वहां वर्णन करते हैं कि उस समय भगवान नरसिंह देव सांस ले रहे थे तो उस सांस से समुन्द्र में लहरें उठने लगी जो लहरें आज तक उठ रही हैं। उस नरसिंह देव पर जब भगवान प्रकट हुए थे और उस दिन उन्होंने सांस लिए और समुन्द्र में लहरें उठने लगी, उसका प्रभाव आज तक यहां पर है। ऐसे उग्र रूप को देखकर देवता समझ गए कि हमारे बस की बात नहीं और भगवान को हार माला पहनाना है, क्या करे क्या करे। तो देवताओं ने सोचा कि देखो कितना भी क्रोधित व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने ठंडा हो जाता है, ऑफिस में कितना भी क्रोध करता हो कितना भी मुंह में हवा भर कर बैठा हो, परंतु जैसे ही घर पर आता है तो शांत। पहले के राजा महाराजा दिग्विजय करके पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करके घर पर आते थे तो घर पे आकर अपना मुकुट पत्नी के चरणों में रख देते थे। देवताओं ने सोचा हमें तो भय है परंतु पत्नी को भेजेंगे तो शायद। लक्ष्मी देवी को बुलाया गया वैकुंठ से, आइए और अपने पति देव को हार माला पहनाइए। लक्ष्मी जी तो बहुत उत्साह से हार माला लेकर आ रही थी, लेकिन जैसे ही देखा प्रभु का मूड ठीक नहीं है, यदि मैं हार पहनाने गई और मुझे दो तीन थप्पड़ मार दिया तो वहां माधुर्य नहीं चलता है। माधुर्य तो एकमात्र श्याम सुंदर कृष्ण से ही प्राप्त कर पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कृष्ण ही प्रेम करने योग्य हैं, क्योंकि कृष्ण ही सभी रसों के भोक्ता है, रसराज है। इसलिए कृष्ण से प्रेम करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तब मन में यह प्रश्न हो सकता है तो फिर कृष्ण से प्रेम कैसे उत्पन्न किया जाए? कृष्ण से प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण से प्रेम करने के लिए मात्र कृष्ण की कथा सुनिए, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कृष्ण से प्रेम करने के लिए उनकी कथा श्रवण किए बिना और कोई रास्ता नहीं है। कृष्ण कथा श्रवण करके ही कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। जैसे भागवत में दशम स्कंद में कथा है, देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था और उनका भाई जरासंग रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह कराना चाहता था, परंतु रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और दूसरे दिन विवाह था। रुक्मणी ने पत्र लिखा कृष्ण को, 8 श्लोक में पत्र, सुखदेव गोस्वामी ने एज इट इज वो पत्र भागवत में रखा है, कभी पढ़ लेना चाहिए। और एक ब्राह्मण को भेजा जाओ, कृष्ण को जाकर यह पत्र दे आओ। ब्राह्मण कृष्ण के पास आए, कृष्ण ने वो पत्र पढ़ा, रुक्मणी ने लिखा था कि हे कृष्ण, मैं आपसे प्रेम करती हूं और आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हूं। मेरा विवाह कल होने जा रहा है, यदि मेरा विवाह अन्य किसी के साथ हो गया तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तब मानो कृष्ण के मन में यह प्रश्न हुआ कि मैंने कभी इस स्त्री को देखा नहीं, इस स्त्री ने मुझे कभी देखा नहीं, तो बिना देखे इतना प्रेम कैसे कर रही है। बात भी सत्य है। यदि मान लो किसी के माता पिता किसी लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह तय करके आए और बिना फोटो बताए बिना बात कराए कहने लगे कि उससे प्रेम करो, तो क्या हवा से प्रेम करेंगे? तो मानो भगवान के मन में प्रश्न हुआ कि न तो मैंने उसे देखा है न उसने मुझे देखा है, तो इतना प्रेम कैसे कर रही है? और इतना प्रेम कि कृष्ण के बिना रह नहीं सकती है। तब रुक्मणी ने उस पत्र में लिखा था, श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर शुणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवहे हर तोंग तापमं रूपम दृशा दृशिमता मखिलार्थनाभम त्वय्यच्युता विशति चितमत त्रपम मैं। हे भुवन सुंदर, हे संसार में तीनों लोकों में सुंदर कृष्ण, आपके मन में यह प्रश्न हुआ होगा कि न तो मैंने कभी आपको देखा है, फिर इतना प्रेम क्यों कर रही हूं? इसका कारण यह है प्रभु, मैंने आपको कभी देखा नहीं, परंतु श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर शुणवताम में, परंतु आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आपको देखा नहीं है परंतु श्रुतवा गुणान आपके गुणों के बारे में शुणवताम थे मैंने बहुत सुना है। हमारे राज्य में जब वेद व्यास जी आते थे, नारद जी आते थे, असित देवल बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, तो उनके मुख से आपकी कथा सुनी है और आपकी कथा सुन सुनकर हे कृष्ण आपके चरणों में इतना प्रेम हो गया है, अब आपके बिना रहा नहीं जाता है। ज्वलंत प्रमाण है भगवान से प्रेम करने के लिए श्रुतवा गुणान, उनकी कथा सुननी चाहिए। रुक्मणी को कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? कथा सुनकर। कृष्ण कथा सुनकर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उसमें भी हरिद्वार जैसे धाम में गंगा की पवित्र धारा के निकट। जिस गंगा की धारा के निकट अनेक संतों ने भागवत कथा का आस्वादन किया है, वही लाभ आज हमें यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। आइए कुछ क्षण के लिए हम भगवत कथा का रसास्वादन करें, श्रद्धा से और प्रेम से धैर्य से यहां पर जो कथा हो रही है धैर्य से हो रही है, शुद्ध सात्विक कथा। वहां शहरों में करते हैं थोड़ा रजस होता है, थोड़ी स्पीड होती है, तो हो सकता है यहां पर आपको नींद आ जाए, परंतु यदि श्रद्धा है, उत्साह है, तो नींद नहीं आ सकती है। आइए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गत सत्र में हमने श्रवण किया कि विबुध्यताम बालिका मारिका गृहम चराचरात्मा आस निमीलित ईक्षण। विबुध्यताम, भगवान समझ गए कि यह पूतना बालकों को मारने के लिए आई है। बालक मारी का गृह, बालक को मारने वाला यह ग्रह है। भगवान समझ गए कारण क्या था। विबुध्यताम, ताम ताम माने उस पूतना को, विबुध्यताम भगवान समझ गए। क्यों? मानो परीक्षित पूछे कि भगवान कैसे समझ गए, पूरे गोकुल में रहने वाले बड़े बूढ़े गोप नहीं समझ पाए, तो कृष्ण पूतना को कैसे समझ गए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चराचरात्मा परीक्षित, क्योंकि कृष्ण जो है चर और अचर की आत्मा है। कल आपने सुना चराचरात्मा का क्या अर्थ होता है, सभी प्राणियों के जीव में परमात्मा के रूप में है, सबके इच्छा को सबके मन को जानते हैं भगवान। और पूतना को देखकर आस निमीलित ईक्षण, अपनी आंख को बंद कर दिया भगवान ने, अपनी आंख को बंद कर दिया। उनके बहुत भाव हमने कल सुने, इतने काफी है। बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए हैं, परंतु इतना ही समझिए, एक बालक होता है अपने घर पर खेलता है और बहुत प्रेम से अपनी माँ के साथ पिता के साथ खेलता है, परंतु जब वह बालक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण भी बालक है और अपरिचित वस्तु को देखकर, ये पूतना को जो अपरिचित थी उसे देखकर आंखें बंद कर ली। देखिए यहां पर कृष्ण एक बालक है और यह कथा जो है हमें कृष्ण को बालक समझकर सुननी है। मैं भी बोल रहा हूं तो भगवान कृष्ण बोल रहा हूं, समझ लीजिए ये हमारे भाव की कमी है। और जिस दिन कृष्ण के आगे भगवान लगाना बंद होगा तब हो सकता है कि भक्ति रस में कुछ आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण एक बालक है और बालक ने उस अपरिचित पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। और तब आरोपियत अंकम अंतकम, पूतना ने उस बालक को अंकम अपनी गोद में आरोपियत उठा लिया। तब मानो परीक्षित महाराज फिर से थोड़ा बहुत टेंशन में आ गए, कह रहे बाप रे, ये पूतना ने कृष्ण को उठा लिया, बालक को उठा लिया। तब मानो परीक्षित महाराज के भाव में गोस्वामी गिरधरलाल कहते हैं, ननु असद अंतकत्वे अपि ही कदाचित तस्या अंतः स्यात्। मानो परीक्षित महाराज ने कहा कि भले ये कृष्ण है भगवान है, परंतु कदाचित ये पूतना कृष्ण को मार देगी तो हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि कृष्ण को बालक समझकर यदि कथा सुनेंगे तो ये प्रश्न उठ सकता है कि पूतना ने कृष्ण को गोद में उठा लिया और कदाचित यदि कृष्ण को मार दी तो सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं नहीं, अनंतम, कृष्ण जो है कौन है, अनंतम श्लोक में आया है। अनंतम का अर्थ होता है जिसका कभी अंत न हो। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अनंत, विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है अनंत, जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। भगवान का कभी अंत नहीं होता है, कृष्ण को कभी कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण अनंत है। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, सबके आदि भी है और इस कृष्ण का कोई अंत भी नहीं है, न आदि है न अंत है। और इस संसार में जितने भी लोग हैं, आदि अंत वंत कौन थे यह हे कुंती पुत्र, इस संसार के लोग और संसार का जो सुख है, आदि अंत वंत कौन थे, आदि भी है अंत भी है। परंतु भगवान का आदि नहीं अंत नहीं। जैसे इस सृष्टि के प्रारंभ में भी भगवान थे, इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा फिर भी भगवान रहेंगे। आचार्य गण दृष्टांत देते हैं, जैसे मिट्टी, मिट्टी को आप देखते हो, मिट्टी 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 होती है और मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है, उस घड़े को उपयोग किया जाता है, परंतु घड़ा जब फूट जाता है तब भी मिट्टी तो बचती ही है। तो उस घड़े के प्रारंभ में भी मिट्टी थी, घड़े के अंत में भी मिट्टी थी, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के प्रारंभ में भी हैं, इस सृष्टि के अंत में भी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अनंत कहा जाता है, अंत नहीं है। और अनंत का तात्कालिक एक अर्थ हो रहा है, अनंत उसे कहा जाता है जिसके लीला का कोई अंत नहीं है, जिसके गुण का कोई अंत नहीं है, जिसके रूप का कोई अंत नहीं है, जिसकी कथा का कोई अंत नहीं है, उसे अनंत कहते हैं। हम देखिए भगवान के रूप का अंत कोई पार नहीं पा सकता है, भगवान श्री कृष्ण के रूप का अंत नहीं है, पर नित्य नवीन है, रोज नया नया दर्शन, हमार माधुर्य नित्य नव नव है, रोज नए दिखते हैं। भगवान के धाम का भी कोई अंत नहीं है, बहुत विशाल भगवान का धाम, भगवान की कथा का कोई अंत नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि भगवान अनंत है और भगवान का कभी अंत नहीं है, भगवान कभी मरते नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण तो भगवान थे, 5000 वर्ष पहले उन्होंने जन्म लिया परंतु फिर वे मर गए। प्रभास क्षेत्र में जरा नाम के शिकारी ने कृष्ण के पांव में बाण मारा, कृष्ण मर गए। परंतु गीता में आप देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूय, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे, आत्मा का न जायते न म्रियते, आत्मा जो है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरानी है। और न हन्यते, मारने के बाद भी, हनन करने के बाद भी हन्य माने शरीर, शरीर के मर जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम छिदंती शस्त्राणि, शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता है, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। अब आत्मा को यदि कोई मार नहीं सकते हैं तो परमात्मा को कैसे मार सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मर गए। ये केवल अज्ञान है, माया है। जैसे सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है, तो सुबह सूर्य का उदय हुआ शाम को अस्त हो गया, इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य शाम को मर गया। यदि कोई दुखी होकर रोते रोते आए, क्या बताए, बेचारा बहुत हेल्प कर रहा था, इतने कपड़े को सुखा रहा था, इतना प्रकाश दे रहा था, परंतु दुख की बात शाम को मर गया। सूर्य कभी मरता है? सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है, कल सुबह फिर से उदय होगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण का न तो कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होता है। भगवान प्रकट होते हैं, सूर्य की तरह अप्रकट होते हैं, जरूरत पड़ने पर फिर से प्रकट होते हैं। तो भगवान का अंत नहीं होता है, इसलिए उसे अनंत कहते हैं। हे परीक्षित, ये कृष्ण जो है कोई साधारण नहीं, अनंत है। और ये अनंत अंतकम पुतना के लिए क्या बने हैं? अंतकम, अंतकम का अर्थ है अंत करने वाला। अंत क माने करने वाला, काल के समान। पूतना ने, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूतना ने कृष्ण को क्या गोद में लिया, अपने काल को ही अपने गोद में बिठा लिया है। दृष्टांत देते हैं कैसे। यथा उरगम, जैसे उरग, पूतना ने कृष्ण को, काल रूपी कृष्ण को अपने गोद में ले लिया। किस प्रकार दृष्टांत देते हुए कहते हैं उरगम, उरग का अर्थ है उरा गच्छति इति उरगम। उर का अर्थ है पेट, उदर हम कहते हैं ना, उर का अर्थ है पेट। उरा गच्छति, पेट से जो गच्छति चलता है उसे उरग कहता है, कहते हैं। पेट से कौन चलता है? सांप। सांप के पांव नहीं होते हैं, सांप जो होता है पेट से सरकता है। तो उरग का अर्थ होता है सांप। कहते हैं यथा उरगम, जैसे उरगम सांप। यथा उरगम सुप्तम अबुद्धि रज्जुधि, जैसे कोई किसी सांप को रस्सी समझकर उठा ले। मान लो अंधेरा है और अंधेरे में कुछ काम करने के लिए रस्सी को उठाया, परंतु लाइट आने पर पता चला ये तो सांप है। ऐसे पूतना अज्ञान रूपी अंधेरे में ग्रस्त होकर, अंधेरे में जैसे व्यक्ति रज्जू को, सांप को रज्जू समझकर उठा लेता है, वैसे ही ये सब के काल भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण बालक समझकर उठा लिया और अपने गोद में ले लिया। और भगवान भी, भगवान चाहते तो पूतना के गोद में जाने से रोक भी सकते थे ना। क्या भगवान ऐसे ही है, कोई भी उठा सकता है लेकर चल सकता है? आप विचार कीजिए, अब लीला का आस्वादन करना है तो ये सब विचार करना होगा। भगवान चाहते तो पूतना के हाथ में नहीं जा सकते थे। जैसे एक लीला भागवत के दशम स्कंद के सप्तम अध्याय में, इसके बाद वाले अध्याय में आती है। एक दिन माँ यशोदा कृष्ण को दूध पिलाकर अपनी गोद में उठाने गई तो कृष्ण का वजन इतना बड़ा, इतना बड़ा कि अपने लाला को उठा नहीं पाई। तो यहां पर जब पूतना कृष्ण को उठा रही है अपने गोद में तो अपना वजन बढ़ा सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को उठाने दिया। एक आचार्य कहते हैं, भगवान भी देखते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, इस संसार में कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, केवल दुराचारी नहीं सुदुराचारो, कितना भी पापी व्यक्ति हो, भजते माम अनन्य भाग, यदि मेरा भजन करता है तो साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सा, तो वह साधु है। तो भगवान ने सोचा होगा कि ये भले राक्षसी, ये पूतना है, कितनी भी दुराचारी है, दुराचरण करने आई है, परंतु कम से कम गोपी ड्रेस, गले में कंठी, बाल में तिलक और चलकर मेरे पास आई है, तो ये भी एक साधु ही है। भगवान हो गए उनके हाथ में। और पूतना आरोपियत, ये बोलते हैं कि लाला कितना सुंदर है, बहुत अच्छा है ये लाला। ऐसे बोलते बोलते, जैसे माओ को यह प्रैक्टिस है, मुझे नहीं आता है, बेटा कितना अच्छा है, लाला 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 करते ले लिया हाथ में। और यशोदा और रोहिणी देखती रह गई। यशोदा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यशोदा और रोहिणी को लगा कि इसकी माँ हम है या ये है, पुतना इतना ड्रामा कर रही थी। यशोदा के रोहिणी के और यशोदा के मन में हो गया कि वास्तव में माँ हम है या ये है, कितना प्रेम करती है, और लाला लाला करते करते अपने गोद में ले लिया। तब श्रीधर स्वामी कहते हैं, ननु यशोदा रोहिणियों ताम कथम न न्यवार्यतम। जब पुतना ने कृष्ण को उठा लिया तो यशोदा और रोहिणी ने एक बार भी पुतना को ना क्यों नहीं कहा। श्रीपाद श्रीधर स्वामी परीक्षित महाराज के भाव में एक प्रश्न उठा रहे हैं। ये आचार्यगण बहुत प्रश्न उठाते हैं और स्वयं उसका उत्तर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम में तो इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ऐसा प्रश्न किया जाए। कभी किया ना, पूतना के बारे में इतना सुना ही नहीं होगा कभी। 5-10-15 मिनट में कथा समाप्त। श्रीपाद श्रीधर स्वामी परीक्षित महाराज के भाव में एक प्रश्न उठा रहे हैं कि पूतना आई, कृष्ण को उठा लिया। अब देखिए, कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, संसार की साधारण माँ अपने घर पर बैठी है और कोई भी स्त्री घर पर आ जाए और अपने उनके बालक को उठाने का प्रयास करे तो माँ इतना तो पूछेगी, तुम कौन हो, कहां से आई हो। ये थर्ड क्लास के बालक को यदि उठा रही है तब भी माँ पूछती है कौन हो, कहां से आई हो, तो ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परब्रह्म परम सुंदर श्याम सुंदर को उठा रही है। तो यशोदा और रोहिणी ने पुतना को रोका क्यों नहीं। मान लो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछे, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित ताम तीक्ष्ण चित्ता अतिवाम चेष्टिता विक्षांतरा कोश परिच्छदासीवत वरस्त्रियम तत्प्रभयाच दर्शिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम। क्या बताऊं परीक्षित, ये पूतना जो थी अंतरा कोश परिच्छद असीवत, ये पूतना जो थी म्यान में रही हुई तलवार के समान थी। आपने कभी तलवार को देखा है म्यान में, विजय प्रभु ऐसा ऐसा कर रहे हैं। पूतना कैसी थी, कहते हैं तलवार के समान। तलवार जो होती है, म्यान जो होती है बाहर से मखमल की बनी होती है और उसमें न जाने क्या क्या वो कांच लगाते हैं, वो लेस लगाते हैं, पूरा उसका डिजाइन होता है। तलवार म्यान जो होती है बाहर से मखमल के समान होती है परंतु अंदर से कहते हैं अति तीक्ष्ण होती है, अंदर से तीक्ष्ण धार वाली होती है और बाहर से मखमल। वैसी ये पूतना ताम तीक्ष्ण चित्त अतिवाम चेष्टिता, वो बाहर से उसकी चेष्टा कैसी थी, अतिवाम मखमल की तरह। बाहर से पूतना की चेष्टा, पूतना का स्वभाव, पूतना के कपड़े वस्त्र बाहर से उस मखमल कोमल थे परंतु अंदर कहते हैं ताम तीक्ष्ण चित्ताम, अंदर से कुटिल हृदय वाली थी। तो बाहर से वह अतिवाम चेष्टिताम, उसकी चेष्टा अच्छी थी, कपड़े भक्त के कपड़े पहने थे, इसलिए देवकी यशोदा और रोहिणी जी ने पूतना को रोका नहीं। और वामम वल्गु जनन्या इव चेष्टितम अतिवाम चेष्टिताम, श्रीधर स्वामी कहते हैं, अब वही प्रश्न उठा है वही जवाब देते हैं कि अतिवाम चेष्टितम बाहर से वाम चेष्टिताम, उसकी चेष्टा कैसी थी, कहते हैं वाम। वाम का क्या अर्थ होता है, वल्गु जनन्या इव चेष्टित, ये पूतना वाम माने बाहर से जनन्या मां के समान चेष्टा कर रही थी कि ये मेरा ही पुत्र है, मां के समान। पूतना इतना अच्छा व्यवहार कर रही थी यशोदा भी उसे नहीं पहचान सकी। इस संसार में किसी भी आदमी को जल्दी पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी जी कहते हैं। और इसीलिए आप देखिए, यशोदा जैसी यशोदा भी पूतना को नहीं समझ पाई तो संसार का साधारण व्यक्ति न समझ पाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए आज पूतना जैसे राक्षस भगवान बनकर बैठ गए हैं और संसार की मूर्ख भोली जनता को ठग रहे हैं। कई सारे ऐसे जो साधारण जीव है, कोई सामर्थ्य नहीं, परंतु अपने आप को भगवान कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत है, हरिद्वार में चाहे हो या न हो, बंगाली बाबा बापू, और लोग उसे भगवान मानते भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार के साधारण लोग ऐसे लोगों को भगवान माने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यशोदा जैसे यशोदा भी समझ नहीं पाई पुतना को। परंतु किसी भी व्यक्ति को पहचानने की बुद्धि रखनी चाहिए। तो पूतना आई और आकर उस बालक को, कृष्ण को अपने गोद में ले लिया। वर स्त्रिय तत् प्रभ्याच गर्षिते निरीक्षमाणे जननी अतिष्ठताम। और पूतना जैसी सुंदर स्त्री को देखकर जननी, रोहिणी और यशोदा जी अतिष्ठताम, अतिष्ठताम कर देता है चुपचाप रह गई, कुछ नहीं बोली। एक कारण तो यह था कि पूतना इतनी सुंदर थी, लक्ष्मी की तरह दिख रही थी। यशोदा और रोहिणी ने सोचा कि साक्षात लक्ष्मी लगता है रूप बदल कर यहां पर आई है और हमारे पुत्र को आशीर्वाद देने आई है। यह सोचकर रोहिणी और यशोदा ने नहीं रोका। तब परीक्षित महाराज मानो पूछे कि पूतना ने फिर क्या किया। तब सुखदेव गोस्वामी दसवें श्लोक में कहते हैं, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवणम घोरांक मादाय शिशो ददावथ। पूतना अपने स्तन पर विष लगाकर आई थी और वह विष कृष्ण को देने की चेष्टा कर रही थी। अब हुआ क्या, जब पूतना ने कृष्ण को उठा लिया, तब यशोदा और रोहिणी अपने गृह कार्य करने के लिए रसोई घर में चली गई और यहां पर अब पूतना और कृष्ण अकेले हैं। और उस समय ही कहते हैं वीर विष का विशेषण दे रहे हैं, दुर्जर उल्बणम और घोर। पूतना अपने स्तन पर जो विष लगाकर आई थी वो विष कैसा था, कथम भूतम विषम, विष कैसा था, कहते हैं दुर्जर। दुर्जर, दुर्जर का अर्थ होता है, वीर राघव जी लिखते हैं, दुर्जर वीर्य दुखेन अपि जरयितुम जीर्णयितुम शक्य। जो व्यक्ति को जीर्ण कर दे, नष्ट कर दे, और वह भी दुख के साथ, दुख के साथ व्यक्ति को नष्ट कर दे, उसे दुर्जर कहा जाता है। कैसा विष था, विष का पान करने से दुखी होकर व्यक्ति मर जाए। और कहते हैं उल्बणम, अतएव उल्बणम अति तीक्ष्णम स्पर्श मात्रेण अपि मारकम इति अर्थ। वह विष पहले तो कहते हैं दुर्जर, दुख देकर मार डाले, और फिर कहते हैं वह विष कैसा था, उल्बणम। जीव गोस्वामी कहते हैं उल्बणम का अर्थ होता है स्पर्श मात्रेण अपि मारकम इति अर्थ। ये विष ऐसा था कि उसे स्पर्श करते ही व्यक्ति मर जाए। स्पर्श करने से भागवत के अष्टम स्कंद में इस वीर्य, इस विष के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यह कालकुट नाम का विष हल हला हलम। जब समुद्र मंथन से निकला तब यह विष ऐसा है कि उसकी गंध मात्र से व्यक्ति मर जाए। और यहां पर कहते हैं उल्बणम, उसके स्पर्श मात्र से व्यक्ति मर सकता है, ऐसा विष वह पूतना अपने स्तन पर लगाकर आई थी। और घोरम, घोर विष था। कहते हैं तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य उल्बणम घोरंक मादाय शिशो ददो अथ। और ऐसा विष अपने स्तन पर लगाकर आई थी, जो विष समुद्र मंथन से निकला था। बड़े बड़े देवता इस विष से कांप गए थे। ये बालक की बात छोड़ दीजिए, प्रश्न हो सकता है, बड़े बड़े देवता भी उस विष को छोड़कर, असुर छोड़कर भाग गए थे, गए शिव जी की शरण में, हे शंभू भोलेनाथ शिव जी रक्षा कीजिए। तब शिव जी ने उस समुद्र मंथन से निकले हुए विष को ग्रहण किया और शिव जी की अंजलि से जो विष के बूंद गिरे हैं, और वह बूंद संसार के कुछ हिंसक जानवरों ने, सर्प ने, बिच्छू ने ग्रहण किए, इसलिए आज तक वह बिच्छू सर्प सब जहरीले होते हैं। कभी कभी मन में प्रश्न होता होगा कि शिवजी के हाथ से विष गिर गया तो क्या शिवजी सतर्क नहीं थे, अंजलि ठीक से नहीं रख सके? गुरु महाराज कहते हैं नहीं नहीं, शिवजी संसार के लोगों को उस विष का प्रभाव बताना चाहते थे, संसार को बताना चाहते थे कि यह विष का प्रभाव कैसा होता है। इसलिए शिवजी ने दो तीन बूंद गिरा दी और वह दो तीन बूंद से आज इस संसार में करोड़ों पशु जहरीले हो गए। कहते हैं ऐसा विष जिससे बड़े बड़े देवता कांप गए थे, वह विष लगाकर पूतना आई थी और पूतना वह विष को ददो अथ भगवान श्री कृष्ण के मुख में। कृष्ण वह स्तन से दूध पीना नहीं चाहते थे, परंतु पूतना ने जबरदस्ती ददो अथ, जबरदस्ती दे दिया, जबरदस्ती। यहां पर एक शब्द आया है अथ शब्द, शिशोर ददाव अथ। मन में एक भाव हो रहा है कि मान लो यदि इसके ऊपर फिल्म बना जाए, बनाया जाए, तो पूतना आई, कृष्ण के मुख में वह कालकूट नाम का विष दिया और कृष्ण ने अपने मुंह में वह स्तन लिया और वह विष भी उसके मुख में गया, दी एंड, समाप्त। क्योंकि बड़े बड़े देवता इससे मर जाते हैं तो ये बालक का तो पता नहीं क्या। मान लो वहां सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं तो सब लोग सिर नीचे करके बैठ गए, तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथ, अथ शब्द। अब जानते अथ शब्द किसी भी प्रकरण के, किसी भी कथा के प्रारंभ में रखा जाता है और इति शब्द जो है किसी भी कथा को अंत करने में, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां, इति अंत करने के लिए और अथ प्रारंभ करने के लिए। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी अथ शब्द बोले हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि पूतना ने अपना जहरीला स्तन कृष्ण के मुख में दिया तो कुछ लोगों को लगा कि अब खत्म हो गया, समाप्त। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं समाप्त नहीं हुआ अथ, अब तो प्रारंभ होने जा रहा है, कहानी समाप्त नहीं हुई। अथ शब्द से सुखदेव गोस्वामी का भाव है अब तो शुरू होगा, अब देखिए आगे क्या होता है। तो कहते हैं अथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड़ियत, और भगवान ने पूतना के स्तन को अपने मुंह में रखा और भगवान श्री कृष्ण पूतना के स्तन को अपने मुख में रखते ही कहते हैं प्राणे समम रोष समन्वित अपिबत, प्राण के साथ पूतना के स्तन को पीने लगे। प्राणे स पानात वस्तु तस्तु परम कृपाम एव करो इतिहाह भगवान। इस श्लोक में भगवान शब्द बताया गया है। मान लो किसी के मन में प्रश्न हो, यहां पर कहा गया है प्राणे समम रोष समन्वित पिबत, भगवान ने, कृष्ण ने पूतना के स्तन को पिया, परंतु कैसे पिया, ठीक से बैठिए। प्राणे समम, भगवान ने पूतना के स्तन को, पूतना के दूध को प्राण के साथ पिया। तब मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने, कृष्ण ने पूतना के स्तन को स्तन से दूध भी पिया और प्राण भी पिया, ऐसा कैसे हो सकता है? संसार में हजारों बालक हैं जो मां का दूध पीते हैं, परंतु केवल दूध ही पीते हैं, प्राण नहीं पीते हैं। और यदि बालक प्राण पीने लगे तो मां कभी दूध पिलाएगी नहीं। और यहां पर कहा गया है प्राणे समम रोष समन्वित पिबत, प्राण के साथ कृष्ण ने दूध पिया। तो संसार में हजारों बालकों को देखा है और हो गए और आएंगे, दूध पीते हैं परंतु प्राण नहीं पी पाते हैं, तो यह बालक कैसे प्राण पी सकता है? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान, ये बालक दूध के साथ प्राण पी सकता है, क्यों? क्योंकि भगवान है, श्लोक में शब्द आया है। सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कहते हैं भगवान, क्योंकि ये भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ। भगवान किसे कहते हैं? जो इम्पॉसिबल वस्तु को भी पॉसिबल कर दे, नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, उसे तो भगवान कहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान है ना, इसलिए ये कर सकते हैं, साधारण बालक ये नहीं कर सकता है। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणी समम रोष समन्वित विवत। और कृष्ण ने कराभ्याम, यदि कर लिखा होता तो एक हाथ होता, कराभ्याम का होता है, ये द्विवचन में है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। कर कराभ्याम, कराभ्याम माने दो कर, अर्थात कृष्ण ने अपने नन्ने नन्ने दोनों हाथों से पूतना के एक स्तन को पकड़ा और पूतना के स्तन को पकड़कर कृष्ण उनका दूध पीने लगे। परंतु दूध पी रहे थे कैसे? रोष समन्वित, रोष का अर्थ होता है क्रोध। कृष्ण क्रोध के साथ पूतना के स्तन से दूध पी रहे थे। अब देखिए और एक प्रश्न, ये हमारा प्रश्न है, आचार्यों ने नहीं उठाया है, परंतु अब मैं प्रश्न पूछूं कि इसी श्लोक में आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान, और भगवान के बाद तीसरे शब्द में प्रपीडियत तत् प्राणे समम के बाद रोष शब्द दे रहे हैं। रोष का अर्थ होता है क्रोध। तो पहले कहते हैं भगवान और फिर कहते हैं कृष्ण ने क्रोध किया, भगवान को कभी क्रोध आ सकता है? तब तो ये श्लोक में झगड़ा हो गया। एक और कहते हैं भगवान है ये कृष्ण, और दूसरी ओर कहते हैं रोष समन्वितो क्रोध के साथ पिया, तो भगवान को कभी क्रोध नहीं आ सकता है? जिसको क्रोध आ जाए वह भगवान हो नहीं सकता है। भागवत के दसम स्कंद में बहुत सुंदर कथा है, सरस्वती नदी के तट पर हजारों ऋषि मुनि एकत्रित हुए और विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किए। देखिए रोष शब्द के ऊपर बोल रहा हूं, जिसको क्रोध आ जाए वह भगवान हो नहीं सकता है। तो अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए, बहुत बड़ा यज्ञ किए, और यज्ञ करने के बाद यज्ञ की आहुति किसे दी जाए, ये प्रश्न उठा। तो कुछ ऋषि मुनि बोलने लगे शिवजी ही भगवान है, ये यज्ञ की आहुति भोलेनाथ को देनी चाहिए। तब दूसरों ने कहा नहीं नहीं, ये यज्ञ की आहुति ब्रह्मा जी को देनी चाहिए। कुछ ऋषि मुनियों ने कहने लगा शिव जी को देनी चाहिए, कुछ ऋषि मुनि कहने लगे ब्रह्मा जी ही भगवान है, ब्रह्मा को आहुति देनी चाहिए। तो कुछ वैष्णव बैठे थे बोलने लगे नहीं नहीं, विष्णु ही भगवान है, विष्णु को आहुति देनी चाहिए। तो जो शैव थे शिव जी के भक्त कहने लगे नहीं, शिव जी संसार का प्रलय करते हैं, शिव जी चाहे तो हम सबको मार सकते हैं, इसलिए शिव जी भगवान। तो ब्रह्मा जी वाले जो थे वो कहने लगे नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया है, ब्रह्मा जी भगवान है। तो वैष्णव कहने लगे नहीं, ये सब कुछ विष्णु करते हैं। अब ऋषि मुनियों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ कि शिव जी भगवान ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में भगवान कौन है, इस बात को लेकर झगड़ा होता है। तो संसार के साधारण लोगों के बीच में हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज होता है ना झगड़ा, हमारे भगवान आपके भगवान इसके भगवान। परंतु आज के जैसे लोग उस सभा में नहीं थे, समझदार थे। सब लोगों ने कहा शांति रखो शांति रखो। अब यहां पर तीन मत हैं, ब्रह्मा भगवान शिवजी भगवान के विष्णु भगवान, ये तीन में से भगवान कौन? तब जो बड़े ऋषि मुनि थे उन्होंने बैठकर निर्णय लिया एक काम करते हैं। अब ऋषि मुनियों की सभा में ऐसा प्रश्न होता तो बिचारे छोटे लोग क्या करेंगे, हम ही कंफ्यूज है तो हमारा जो अनुगमन करते हैं हमारे शिष्य हैं वो तो बिचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अभी निर्णय ले लेना चाहिए भगवान कौन है, और इसके लिए क्या करेंगे, ये तीनों भगवान की परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा कौन लेगा, एग्जाम कौन लेगा? तो सब ने मिलकर कहा कि भृगु मुनि जो है वो हमारे वरिष्ठ है, भृगु मुनि को हम भेजेंगे। भृगु मुनि को खड़ा किया, प्रभु आप जाइए। परंतु भृगु मुनि ने कहा कि मैं जाकर एग्जाम पेपर तो मुझे दे दो, मैं वहां जाकर क्या एग्जाम लूंगा, क्या परीक्षा लूंगा। तब सब लोगों ने कहा कि वहां जाकर परीक्षा लो, तीनों को कुछ थोड़ा बहुत परेशान करो, यदि क्रोध आ जाएगा तो समझ लेना भगवान नहीं है, और ये तीनों में से जिसको क्रोध नहीं आया वो भगवान है, क्योंकि भगवान को कभी क्रोध नहीं आ सकता है। तब भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ये भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए क्योंकि परीक्षा लेनी थी। परीक्षा लेने नहीं आए होते तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते, परंतु ब्रह्मा जी को थोड़ा सा परीक्षा लेना है इसलिए भृगु मुनि ब्रह्मा जी के सामने जाकर खड़े रह गए। कुछ बोला नहीं, कुछ प्रणाम नहीं, दंडवत नहीं, कुछ नहीं। तो भृगु मुनि ने ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आया, ये कैसा पुत्र है, इतने सालों के बाद मेरे पास आया है फिर भी प्रणाम नहीं कर रहा है, यदि प्रणाम करता तो मैं आशीर्वाद देता, ये पुत्र नहीं है। ब्रह्मा जी को मन में क्रोध आया। भृगु मुनि समझ गए ये क्रोध भले बाहर से व्यक्त नहीं कर रहे हैं परंतु मन में वे क्रोध ला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उस परीक्षा में फेल हो गए। भृगु मुनि ने कहा कि ये भगवान नहीं हो सकता। तो वहां ब्रह्मलोक से भृगु मुनि फिर कैलाश में गए, शिव जी के धाम में, और उस समय शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को गोद में बिठाकर भागवत कथा कर रहे थे। भृगु मुनि वहां पर आए और शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इस नाते शिव जी और भृगु मुनि दोनों भाई हैं। तो शिव जी ही पार्वती को गोद में बिठाकर भागवत कथा कर रहे थे। भृगु मुनि को आए देखकर शिव जी खड़े हो गए और खड़े होकर दौड़कर अपने भाई को आलिंगन करने गए। भृगु मुनि ने कहा दूर खड़े रहना, मेरे पास मत आना। न तो कपड़े पहनने का कोई ठिकाना है, न तो बाल कभी कटवाता है, और पत्नी को गोद में बिठाकर भागवत कथा करनी चाहिए, इतना भी ज्ञान नहीं है तुझे। भूतों के बीच में रहता है, शमशान की राख शरीर पर लगाता है। जब इस प्रकार से भृगु मुनि शिव जी का अपमान करने लगे, क्योंकि परीक्षा लेने आए थे, अपमान करने लगे, शिव जी ढूंढने लगे त्रिशूल कहां है, त्रिशूल। शिव जी दौड़े त्रिशूल लेने के लिए, परंतु पार्वती जी ने शिव जी का चरण पकड़ लिया। प्रभु अपने आपके भाई हैं, छोड़ दीजिए, बड़े भाई हैं। अब पत्नी के मनाने पर शिव जी शांत हो गए, बैठ गए, और भृगु मुनि की परीक्षा तो हो गई, वे वहां से हरिबोल करके निकल गए। अब दो देवता की परीक्षा हुई, तीसरे बाकी रहे, गए वैकुंठ में। भगवान विष्णु शेष सैया पर सो रहे थे। देखिए ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, उससे थोड़ा कड़ा पेपर शिव जी का था, और उससे भी कड़ा जो पेपर है भगवान विष्णु के पास लेकर आए। भगवान विष्णु अब शेष सैया पर सो रहे थे और लक्ष्मी जी चरण सम्मारण कर रही थी, और उस समय भृगु मुनि दौड़ते हुए आए। भगवान विष्णु सो रहे थे तो धम करके भृगु मुनि ने अपनी लात शिव जी के, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर मारी, जोर से लात मारी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यह लात यदि शिव जी के पास जाकर मारी होती तो भृगु मुनि के पास सरस्वती नदी पर लाश आती। ये गए थे परीक्षा लेने और लाश आई है, परंतु यहां भगवान विष्णु के पास आए और आकर वक्षस्थल में जोर से लात मारी, भगवान तुरंत खड़े हो गए। खड़े होकर सबसे पहले भृगु मुनि के चरण में प्रणाम किए और भृगु मुनि के चरण को, एक चरण को अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ से सम्मारण करने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे धाम में हमारे घर पर आए हो, मुझे पता नहीं था आप आने वाले हो, यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं आपके आने का स्वागत करता, मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरा जो वक्षस्थल है वज्र से भी कठोर है और आपके चरण आज मेरे वक्षस्थल पर पड़े हैं, आपको चोट आ गई होगी, आपको दर्द हुआ होगा आपके चरण में, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप मेरे घर पर आए हो और मेरे वक्ष स्थल पर आपने अपना चरण रखा है। मैं वादा करता हूं कि मैं सदैव आपके चरण को मेरे वक्ष स्थल पर धारण करके रखूंगा। आज भी भगवान के वक्ष स्थल में भृगु जी के चरण है। और इतना सुनकर तो भृगु जी की आंख में आंसू आ गए। देखिए, इसे कहते हैं भगवान। इतना दुखी करने पर भी, लात मारने पर भी भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा, उल्टा भगवान विष्णु ने भृगु जी का स्वागत किया, क्षमा याचना की। तब भृगु मुनि वापस आए सरस्वती नदी के तट पर और अनाउंसमेंट किया कि एक ही भगवान है, वह विष्णु। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इस कथा के संदर्भ में बहुत शिक्षाएं हैं, भागवत की कथा है ये, कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी का अपराध करता है, किसी को परेशान करता है, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। भगवान विष्णु ने भृगु जी को क्षमा कर दिया, इसलिए कवि गण कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। जो बड़े होते हैं उसे क्षमा करनी चाहिए, और क्षमा करने वाला ही बड़ा होता है। 60 साल के व्यक्ति ने कुछ गलती की है और 5 साल का बालक यदि क्षमा कर देता है तो 60 साल के बूढ़े से 5 साल का बालक बड़ा है, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए। जो क्षमा करता है वह बड़ा होता है, और छोटन को अपराध, और अपराध करने वाला छोटा होता है। कहां विष्णु को घट गयो भृगु ने मारी लात। बताइए भगवान विष्णु का क्या घट गया यदि भृगु मुनि ने लात मार दी। क्षमा करनी चाहिए। और साथ में ये भी एक कथा है कि जब भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी, भगवान विष्णु को कोई फर्क नहीं हुआ, परंतु भगवान की पत्नी जो बैठी थी लक्ष्मी जी, उसे अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, और ये आज का ब्राह्मण आकर लात मार दिया। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि बस अब ब्राह्मणों के सामने नहीं देखना है। उस दिन से लक्ष्मी जी ने अपना घूंघट ब्राह्मणों के सामने खींच लिया, आज तक ऊपर नहीं हुआ। उस दिन से लेकर आज तक ब्राह्मणों के वहां लक्ष्मी की कमी होती है, धन की कमी होती है। ब्राह्मणों के पास ज्ञान होता है, पवित्रता होती है, परंतु धन की, लक्ष्मी की कमी होती है। तो बहुत सुंदर कथा है। मेरा तात्पर्य यह है कि यहां पर प्रश्न ये उठा था कि जो क्रोधित होते हैं भगवान नहीं हो सकते हैं, और ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, शिव जी क्रोधित हो गए, इसलिए वे भगवान नहीं। विष्णु क्रोधित नहीं हुए इसलिए उसे भगवान स्वीकार किया गया। तब यहां पर आप देखिए कि रोष समन्वितो पिबत। भगवान कृष्ण ने तो रोष किया, क्रोध किया, और उसे भगवान भी कह रहे हैं, तो इस बात को कैसे समझा जाए। तब जीव गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं, या तो ये भगवान है नहीं, या तो भगवान है तो क्रोध करेंगे नहीं। परंतु जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान कारुण्य आदि सद्गुण युक्तोपि। भगवान में कारुण्य आदि सद्गुण बहुत मात्रा में है। भगवान श्री कृष्ण में करुणा है, आपने देखा ना भगवान विष्णु में कितनी करुणा। भृगु ने लात मार दी फिर भी क्षमा कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण में करुणा है, सद्गुण है। अपि परंतु, अब जवाब दे रहे हैं, परंतु प्राग बहुल बालकत बालक वधेन परम क्रुद्ध सन। कृष्ण में करुणा है, कृष्ण कभी क्रोध नहीं करते हैं, परंतु प्राग इसके पहले बहु बालक वधेन, पुतना ने बहुत सारे बालकों को मार चुकी थी, बहुत सारे बालकों का वध किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण परम क्रुद्ध हो गए। क्यों क्रोधित हुए? भगवान को मारने के लिए आई है इसलिए भगवान क्रोधित नहीं हुए, परंतु भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त को पूतना ने मारा है। प्राग इसके पहले पूतना ने कई सारे निर्दोष बालकों को मेरे भक्तों का वध किया है, इसलिए भगवान क्रोधित हुए। जीव गोस्वामी का यह मत है, यह सत्य बात है। भगवान को यदि परेशान किया जाए, भगवान का यदि अपराध किया जाए, भगवान क्रोधित नहीं होते। हरो रुष्टे गुरु यात्रा, गुरु रुष्टे न कश्चन। भगवान यदि रूठ जाए तो उसे मनाया जा सकता है, परंतु भक्त को यदि परेशान किया जाए तो भगवान फिर उसे कभी क्षमा नहीं करते। आपने देखा होगा भागवत के नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में अम्बरीश महाराज का प्रसंग है। अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत का पालन और द्वादशी के दिन की यह कथा है। आज भी द्वादशी है। अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण की बहुत महिमा है। उस समय दुर्वासा ऋषि आए थे और कहा कि मेरे लिए भोजन बन तैयार करो, मैं स्नान करके आ रहा हूं। स्नान करने गए और यहां पर पारण का समय बीता जा रहा था। अम्बरीश महाराज ने उस समय अम्बरीश महाराज बहुत धर्म संकट में फंस गए, परंतु कुछ साधु संतों को अम्बरीश महाराज ने पूछा, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तब संतों ने उत्तर दिया, एक काम कीजिए, आप पानी पी लीजिए, पानी को भोजन भी नहीं गिना जा सकता है और आपका जो पारण है वह भी हो जाएगा। संतों के कहने पर अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया। दुर्वासा जी आए, पता चला अम्बरीश ने जल पिया, क्रोधित हो गए। अब बताइए, अम्बरीश ने जल पी लिया तो दुर्वासा को क्या फर्क पड़ा। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, अपने सिर से जटा उखाड़े, पृथ्वी पर पटके और कृत्या उत्पन्न की और कृत्या को आदेश दिया कि इस अम्बरीश को मार डालो। कृत्या हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने गई। न चचाल भू, मां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परंतु अम्बरीश तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के ऊपर संपूर्ण विश्वास था। वह कृत्या हाथ में तलवार लेकर दौड़ती हुई अम्बरीश के पास आई, परंतु अम्बरीश महाराज एक कदम भी अपनी जगह से नहीं हिले। इसे कहते हैं विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और उसी समय जब वह कृत्या तलवार से अम्बरीश महाराज को मारने गई, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस कृत्या का वध कर दिया और फिर वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए पीछे पीछे था। दुर्वासा समझ गए कि मुझसे अपराध हुआ है, यह सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा। दुर्वासा आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे, दिश समुद्र ऊर्ध्व अध लोकान, कहते हैं सभी दिशाओं में, सभी समुद्र के ऊपर, ये लोक में वह लोक में, सब जगह पर भागे दुर्वासा जी, परंतु सुदर्शन उसका पीछा नहीं छोड़ा। भागते भागते दुर्वासा जी ब्रह्म लोक में आए, ब्रह्मा जी आप मेरी रक्षा करें, ब्रह्मा जी ने ना कर दिया। कैलाश में गए, शिव जी आप मेरी रक्षा कीजिए, शिव जी ने ना कर दिया। शिव जी ने कहा जिसका सुदर्शन है उनके पास जाओ। तब दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। उस समय भगवान विष्णु ने जो कहा है कि दुर्वासा जी आप मेरे पास आए हो रक्षा करने के लिए, अहम भक्त पराधीन, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं भक्तों का दास हूं, मैं भक्तों का नौकर हूं। हम भक्त पराधीन। तो दुर्वासा जी ने कहा प्रभु आप मेरे पर दया कीजिए। भगवान कहते क्या तेरे पर दया करूं? दुर्वासा दया हृदय से होती है। दया कहां से उत्पन्न होती है? दया हृदय से उत्पन्न होती है। और साधो हृदय मह्यम, और मेरा हृदय जो है ना मेरे भक्त है, साधु है, साधु मेरे हृदय है और हृदय से दया उत्पन्न होती है। तूने उस हृदय को, साधु को जलाने का प्रयास किया है, साधु को मारने का प्रयास किया है। दुर्वासा मेरा हृदय जल चुका है, अब इस हृदय से कृपा नहीं हो सकती है, दया नहीं हो सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए भगवान का अपराध करे तो व्यक्ति बच सकता है, परंतु भगवान के भक्तों का अपराध यदि हो जाए तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। गुरु रुष्टेन कश्चन, वैष्णव अपराध से भगवान भी मुक्त नहीं करा सकते। तब अंत में भगवान ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए भगवान ने भी कह दिया, बड़े बड़े लोग, बड़े से बड़े पापी भी भगवान के पास जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दुर्वासा को भगवान ने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। परंतु अंत में कहा कि यदि आपको, आप अपनी रक्षा चाहते हो तो जिसका अपराध किया है उसकी शरण में जाओ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुर्वासा जी बहुत घूमे, एक साल के बाद फिर से अम्बरीश महाराज के पास आए। अम्बरीश देखिए भगवान की भक्ति में, अम्बरीश महाराज के मन में ऐसा नहीं है, वाह देखो मेरा अपराध करने चला था, मार डाला सुदर्शन, ऐसा नहीं हुआ। अम्बरीश महाराज दुखी थे कि मेरे घर पे अतिथि आए और बेचारे भोजन किए बिना चले गए। और भक्तों इतिहास साक्षी है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दुर्वासा जी एक साल के बाद अम्बरीश महाराज के पास आए, उस एक साल तक अम्बरीश महाराज एक जगह पर खड़े रहकर तपस्या किए और दुर्वासा की राह देखे और खुद भोजन नहीं किए। और दुर्वासा जी एक साल के बाद आए, अम्बरीश महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। अम्बरीश महाराज ने उठा लिया, प्रभु आप मुझे दंडवत कर रहे हैं, आप तो महान हैं, तो साधु हैं। तब दोनों हाथ जोड़कर दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज को कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है, मेरी पीठ जलकर राख हो गई है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब उसी समय भागवत में वर्णन है, अम्बरीश महाराज कहते हैं कि वास्तव में यदि मैंने भगवान की शुद्ध भक्ति की है, मैंने स्वप्न में भी किसी से द्वेष नहीं किया है, स्वप्न में भी किसी की निंदा नहीं की है, तो यह सुदर्शन चक्र दुर्वासा की रक्षा करे। अम्बरीश महाराज अपनी जीवन की सारी भक्ति को दाव पर लगा दिए, मैं मेरे जीवन की सारी भक्ति का फल दुर्वासा को देता हूं और ये सुदर्शन चला जाए। इतना कहते ही सुदर्शन वहां से चला गया, हम दुर्वासा की रक्षा हो गई। परंतु उस समय दुर्वासा ऋषि ने कहा वाह आज मुझे पता चला कि वैष्णवों की क्या महिमा है, आज मुझे पता चला कि भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी क्यों बन जाते हैं, 2% के नौकर क्यों हो जाते हैं। आज मुझे पता चला कि यशोदा मैया के हाथ में कृष्ण बंध क्यों जाते हैं। आज मुझे पता चला वैष्णव की महिमा। वहां पर भागवत में श्लोक आया है, दुर्वासा जी कहते हैं मैं जिस अम्बरीश को मारने चला था, कृत्या को उत्पन्न करने जिस अम्बरीश को मैं मारने चला था, वह अम्बरीश ने अपने जीवन की सारी भक्ति देकर मेरी रक्षा की। इसे कहते हैं वैष्णव। यह है भक्तों वैष्णव का गुण। हम सब वैष्णव है ना, तो हम सब भक्तों को यह जानकर यह गुण हमारे अंदर डेवलप करना चाहिए। वैष्णव का अर्थ यह होता है कि दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर हृदय में दुख हो जाए। नरसिंह मेहता गाते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने। दूसरे के दुख को जो जानता है उसे दूर करता है, वो है वैष्णव। खैर ये तो वैष्णव की महिमा है, परंतु मेरा कहना ये है कि कृष्ण क्यों क्रोधित हुए, क्योंकि पूतना ने कृष्ण के भक्तों का अपराध किया था। इसलिए यहां पर कहते हैं प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत, इसलिए कृष्ण को क्रोध हुआ, भक्तों का अपराध करने के कारण कृष्ण क्रोधित हो गए। श्रीपाद वल्लभाचार्य बहुत सुंदर एक भाव दे रहे हैं, कृष्ण ने क्रोध क्यों किया, तो ये जो रोष है, रोष का अर्थ होता है क्रोध, और ये क्रोध जो है आग के समान होता है। आपने कभी अनुभव किया है, क्रोध आग के समान व्यक्ति को गर्म कर देता है। हम देखिए व्यक्ति, आप सब भागवत में बैठे हो तो सब लोग खुश हो, प्रसन्न हो, आपका रंग भी बहुत उजला लग रहा है, लेकिन जैसे ही किसी के सामने क्रोध करने लगे तो ये कान जो है लाल हो जाएंगे, ये मुख भी लाल हो जाएगा, चेहरा भी लाल हो जाएगा। क्रोध आग के समान होता है। श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान ने देखा कि पूतना अपने स्तन पर विष लगाकर आई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध इसलिए किया क्योंकि क्रोध आग के समान होता है और उस आग के द्वारा भगवान पूतना के स्तन के विष को जला देना चाहते थे, इसलिए कृष्ण ने क्रोध किया। क्रोध के द्वारा कृष्ण के स्तन के, पूतना के स्तन के उस विष को जलाना चाहते थे। और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि यहां पर रोष समन्वितो पिवत, रोष के साथ कृष्ण ने वह स्तन पिया, दूध पिया, तो रोष का एक अर्थ होता है शिव जी, रोष का अर्थ होता है शिव जी, शिव जी का एक नाम है रोष। तो भगवान ने कहा, शिव जी को बुलाया, शिव जी विष आप पीजिए, दूध मैं पी लेता हूं, दोनों अपना अपना भाग ले लेते हैं। खैर जो भी हो, शिव जी के साथ पिया या क्रोध के साथ पिया या क्रोध रूपी अग्नि में जला करके पिया, परंतु पिया अवश्य, खराब पिया, दोनों हाथों से पिया। परंतु कहते हैं प्राणे समम अपिवत। अब देखिए थोड़ी बुद्धिमान वाली बात आ रही है, पूतना के स्तन के दूध को पिया परंतु दूध के साथ प्राणे समम। अब देखिए प्राणे जो है बहुवचन में है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, यदि एक वचन होता तो प्राण शब्द आता, प्राण समम अपिवत, तो पूतना तो एक ही है, तो फिर यहां पर बहुवचन क्यों लगाया गया? ये प्रश्न उठाने वाले बहुत आचार्य होते हैं। बात समझ में आ रही है? कृष्ण ने पूतना के दूध को भी पिया और प्राण को भी पिया, पूतना के प्राण को पी रहे हैं, तो पूतना के प्राण को पी रहे हैं तो पूतना तो एक ही है, तो एक वचन में प्राण समूह अप्रवृत्त होना चाहिए, तो यहां पर प्राण नहीं है अर्थात बहुवचन है, तो इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण को नहीं पी रहे हैं, इसके पहले पूतना कई सारे बालकों के प्राण को पी चुकी है, तो पूतना के पेट में बहुत सारे बालकों के प्राण हैं, उस बालकों के प्राण को भगवान कृष्ण पी रहे हैं और सबको मुक्ति दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वल्लभाचार्य जी का बहुत सुंदर भाव है, जिन जिन बालकों को पूतना ने मारा है, और क्या करती थी पूतना, बालकों के रुधिर को पी जाती थी, बालकों के प्राण को पी जाती थी। आप बैठिए, प्रसाद नहीं बनाना है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
क्योंकि सुनना ही सबसे बड़ी भक्ति है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्राणे समम अपिवत, तो प्राणे शब्द बहुवचन में है और पूतना ने अपने शरीर में बहुत सारे बालकों का प्राण पी लिया था, तो भगवान ने देखा मेरे होते हुए ये इतने बालकों को मार चुकी हैं, परंतु भगवान ने सोचा कि अब सबकी सबको मुक्ति देना होगा, तो भगवान श्री कृष्ण पूतना के अंदर जितने भी प्राण थे, जितने भी बालकों के प्राण बहुवचन में है, बहुत सारे बालकों के प्राण भगवान ने पिए, तो इस प्रकार भगवान ने कई लोगों का उद्धार किया। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये बहुत सारे बालकों का, केवल बालकों का ही नहीं बहुत लोगों का वास है। मन में प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि कृष्ण इतने सारे बालकों के प्राण को पी गए, कृष्ण के अंदर इतने सारे बालक, कृष्ण के अंदर इतने सारे बालक नहीं बहुत सारे बालक हैं, इसलिए वह मिट्टी खाने के लीला में कृष्ण कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब हे मां अहम न भक्षितवान। जब बलदेव जी ने शिकायत की कि कृष्ण ने माटी खाई है, यशोदा ने पूछा कि बेटा तूने माटी खाई है, तब कृष्ण ने कहा नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। तो क्या कृष्ण ने माटी नहीं खाई थी? खाई थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते थे कि मैया मैंने अकेले ने मिट्टी नहीं खाई, ये मेरे अंदर जो है जितने भक्त ये सब ने मिट्टी खाई। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यशोदा को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते व्यादेही, देख लो मेरे मुंह में, खोल। कृष्ण ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो भगवान ने दिखा दिया अनंत कोटि ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव, और अनंत कोटि जीव के बीच में एक ब्रह्मांड, एक पृथ्वी, एक एशिया, एक भारत, मथुरा, गोकुल और कृष्ण और यशोदा। दिखा दिया भगवान ने कि मेरे अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड है, वह अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत जीवों ने मिट्टी खाई। तो इस प्रकार प्राणे समम अभिवत, अनेक प्राणों के साथ भगवान ने उस पीकर अनेक भक्तों का उद्धार किया। तो भगवान श्री कृष्ण प्राण पी रहे थे, ये तो बात ठीक है, समझ में आ रही है, और प्राण के साथ पूतना का दूध भी पी रहे थे। अब मन में प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण ऐसे मांस खाने वाली राक्षसी का दूध पिएंगे? कैसे पी सकते हैं? तो जीव गोस्वामी इस बात को क्लियर करते हैं, ततश्च रोष द्वारा पिबत नाशयन इति रोष रूपम तत्तेज एव तान पिबत न स्वयं इति अर्थ। ये जो विष है, जीव गोस्वामी कहते हैं विष को, विष शिव जी को पिला दिया, और जो बालकों के प्राण है भगवान स्वयं पी लिए, और दूध नहीं पूतना के तेज को नष्ट कर दिया भगवान ने। कृष्ण पूतना का दूध कभी नहीं पी सकते हैं, वे कोई साधारण मां का दूध नहीं पीते हैं, भक्त का दूध पीते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्मिन सनम दुर्जर वीर्य मुलबणम, ये दुर्जर उलबणम घोर विष से युक्त स्तन कृष्ण के मुख में दिया, कृष्ण ने स्तन के द्वारा प्राण पिया वो विष और दूध को ग्रहण किया। अगले श्लोक में बालक रूपेण अपि भगवता तथा ग्रहणेन स्तन पानेन तस्या महती पीड़ा जाता तम आह स इति। अब पूतना का शरीर बहुत विशाल है, वैसे तो छोटा रूप बनाकर आई थी आई है, परंतु उस छोटे रूप के कंपेयर में भी कृष्ण बहुत छोटे हैं, और कृष्ण पूतना के स्तन का पान कर रहे हैं, परंतु छोटे से कृष्ण, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी पूतना है और कृष्ण कितने छोटे हैं, परंतु उस छोटे से कृष्ण पूतना के स्तन का पान कर रहे हैं, फिर भी पूतना को बहुत पीड़ा हो रही है, महती पीड़ा जाता। गोस्वामी गिरधरलाल कहते हैं कि पूतना को बहुत पीड़ा हो रही है, तो मानो प्रश्न हो कितनी पीड़ा हो रही है। तब कह पूतना, जब भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तन पीने लगे, पूतना को बहुत पीड़ा होने लगी, और फिर पूतना कहते हैं सामुंच मुंचम इति प्रवासिनी निष्पीड्य माना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा शिपति रुरोदह रुरोदह। पुतना रोने लगी। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण, पहले तो कृष्ण पुतना के स्तन को पी नहीं रहे थे, तब पुतना ने जबरदस्ती कृष्ण के मुख में अपना स्तन रख दिया, और अब पुतना क्या कर रही है, सा मुंच मुंच, मुंच का अर्थ होता है छोड़ दे, अरे छोड़ छोड़ छोड़। यशोदा रोहिणी गृह के काम में व्यस्त है, और यहां कृष्ण पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं, सब खाली हो गया, लेकिन फिर भी पी रहे हैं। तब पूतना को कष्ट हो रहा है और मुंचा मुंचा छोड़ छोड़ इस प्रकार से पुकार रही है। इति प्रभाषिणी, अब वल्लभाचार्य जी और एक प्रश्न उठाए, ये प्रवासिनी शब्द जो है, प्रवासिनी का अर्थ होता है पुकारना। उतना जोर जोर से पुकार रही थी कि छोड़ छोड़। तो वल्भाचार्य जी कहते हैं कि बृहद आरण्य उपनिषद में कहा गया है कि ये जो बोलने की शक्ति है ये प्राणों से आती है। बात भी सत्य है, हम इसका अनुभव भी किए हैं। बोलने की शक्ति कहां से आती है? प्राणों से। यदि प्राण निकल जाए तो कोई बोल सकता है? कितनी भी अच्छी वाणी हो, यदि जब व्यक्ति मर जाता है, प्राण निकल जाता है, व्यक्ति बोल नहीं सकता है। और पिछले 10वें श्लोक में ही कहा है कि भगवान ने पूतना के प्राण को पी लिया। अब पूतना के प्राण चले गए हैं तो प्रभाषिणी तो बोल कैसे रही है? वल्भाचार्य जी का यह प्रश्न है। अब पिछले ही श्लोक में कह दिया कि प्राण समम रोष समम पिबत, रोष के साथ प्राण को पी लिए। यदि पूतना के प्राण कृष्ण ने पी लिए हैं, पूतना के प्राण चले गए हैं, तो कथम भूतम प्रभाषिणी, तो कैसी प्रभाषिणी, ये कैसे पुकार रही है, बोल रही है? तो वल्भाचार्य जी उनका उत्तर दे रहे हैं कि पूतना के प्राण निकल गए हैं, परंतु पूतना का स्पर्श कृष्ण के साथ है, इसलिए पूतना बोलने में समर्थ हो रही है। अंदर से प्राण निकल गए हैं, कृष्ण पी गए हैं, लेकिन फिर भी बाहर से भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पूतना के साथ है, इसलिए करंट मिल रहा है बाहर से। अंदर से जनरेटर निकल गया है। ये परमात्मा जो है जनरेटर के समान है। परमात्मा जनरेटर रूपी आत्मा को शक्ति देते हैं और आत्मा के द्वारा शरीर को शक्ति मिलती है। तो अंदर से जनरेटर निकल गया है, परंतु बाहर से ये जनरेटर के साथ उसके जो वायर है, कनेक्शन है, इसलिए पूतना बोलने में समर्थ है। तो क्या बोल रही है? मुंच छोड़ छोड़ करते हुए पूतना अब कृष्ण को छुड़ाना चाहती है। कृष्ण पूतना के स्तन पर जैसे दरवाजे को ताला लटकता है, वैसे कृष्ण दोनों हाथ पकड़कर पूतना के स्तन पर लटक रहे हैं। और पूतना छोटे से बालों को कहती है छोड़ छोड़ छोड़, क्योंकि अब उसे बहुत कष्ट हो रहा है। तो हरीश्वरी जी कहते हैं ये है हमारे भगवान का स्वभाव। पहले तो किसी के हाथ में नहीं आते हैं, आंख बंद कर लिए पूतना को देखकर और न जाने क्या क्या किए। एक तो ये कृष्ण किसी के हाथ में नहीं आते हैं, और जिसके हाथ में आ जाते हैं उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। ये है कृष्ण का स्वभाव, हरीश्वरी जी कहते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत स्वभाव है। भक्त लोग कितना मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, रोज 16 माला जप है, पहाड़ उठाने के समान। ये माला को उठाना ये पहाड़ उठाने के समान हो जाता है, जैसे गोवर्धन धारण करना है और चार नियम का पालन करना, सुबह जल्दी उठना, भक्त लोग एकादशी व्रत रहना, कितनी तपस्या करते हैं, भगवान को पकड़ने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु भगवान हाथ में आते नहीं। किसी के हाथ में आए हैं? हम सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं, पकड़ने का प्रयास, परंतु हाथ में आते नहीं। और जिसके हाथ में आ जाते हैं फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। कृष्ण को ग्रह कहा गया है, एक बार ये लग गया तो फिर छूटता नहीं है। ब्रज वृंदावन में जब किसी नई बहू आती थी तो उनकी सास उसे सबसे पहले यह सिखाती थी, बेटा जब पनघट में पानी भरने जाओगी ना तो ध्यान रखना, आजू बाजू में मत देखना, बस केवल एक ही जगह पर रास्ते में देकर पानी भरकर सीधा सीधा वापस आ जाना। तब वह नई बहू अपनी सास को पूछती है यदि आजू बाजू में देखेंगी तो क्या होगा? कहते यदि आजू बाजू में कृष्ण के सामने तुम्हारी दृष्टि पड़ गई तो वह काला ग्रह के समान है, वह पकड़ लेगा तो फिर वह जल्दी जाता नहीं है। रूप गोस्वामी ने भी पद्यावली में इसी बात को कहा है कि देखो यदि संसार में पति पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर ही भौतिक संसार में मग्न रहना चाहते हो तो कभी वृंदावन मत जाना, और यदि वृंदावन में भी चले गए तो यमुना के तट पर मत जाना, और यदि यमुना के तट पर चले गए तो भूल से भी वह तीन जगह से टेढ़े हाथ में बांसुरी रखने वाले श्याम सुंदर के सामने भूल से भी मत देखना। यदि देख लिया तो फिर पत्नी में से आसक्ति चले जाएगी, पुत्र में से आसक्ति चले जाएगी, घर से आसक्ति चले जाएगी, फिर भक्त बन जाओगे। तो यदि भक्त नहीं बनना है तो वृंदावन मत जाना, और भक्त बनना है तो वृंदावन दूर नहीं है। तो कृष्ण पकड़ में नहीं आते हैं। आप देखिए यशोदा माँ ने कितना प्रयास किया था, ये नवम स्कंद में कथा, नवम अध्याय में कथा है। यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ने का बहुत प्रयास, दामोदर लीला, उखल बंधन, कृष्ण आगे आगे भागते थे, यशोदा मैया पीछे पीछे, बहुत भगाए, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी यहां, कभी घर पर, कभी आंगन में। कृष्ण का शरीर तो छोटा सा था, पतला सा था, छोटे छोटे पांव से दौड़ रहे थे, पर तो यशोदा मोटी थी, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, और किसी भी बात की चिंता नहीं। ये चिंता वाले कभी शरीर से ठीक नहीं होते हैं, चिंता जिसको होती है वो सूखे पतले होते हैं। कृष्ण बहुत दौड़े, यशोदा को दौड़ाए, पसीने से लथपथ यशोदा हो गई, परंतु कृष्ण ने देखा कि अब मैया बहुत प्रयास कर रही हैं, तो उसके हाथ में आ जाना चाहिए। कृष्ण यशोदा मैया के हाथ में आ गए और यशोदा मैया अपनी रस्सी से कृष्ण को बांधने का प्रयास, परंतु जैसे ही रस्सी से कृष्ण को बांधने का प्रयास, वह रस्सी ही दो उंगली कम रहती थी। घर की जितनी भी रस्सी थी सबको ज्वाइंट की और फिर से बांधने का प्रयास, फिर से दो उंगली कम। कहा कि हमारे गांव में जितने घर है सबके घर पर जाओ, रस्सी लेकर आओ, कृष्ण को आज बांध कर रहूंगी। गोपियों ने कहा छोड़ दो, कृष्ण के नसीब में बंधन नहीं लिखा है, तुम नहीं बिगाड़ के रखा है, जाओ जल्दी लेके आओ रस्सी को। यशोदा मैया क्रोधित, भक्त भगवान को बांधने का प्रयास, पूरे गांव की रस्सी लाई गई और ज्वाइंट की गई, फिर भी दो उंगली कम। कहते पूरी दुकान की रस्सी लेके आओ, जोड़ी गई, फिर भी कम। सनातन गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं, भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान को बांधने के लिए दो उंगली होना जरूरी है। यदि ये दो उंगली नहीं होगी भगवान बंधेंगे नहीं। ये दो उंगली कौन सी है? ये दो उंगली में से एक उंगली है हमारा प्रयास। भगवान को बांधने के लिए सबसे पहले प्रयास होना चाहिए। 8 बजे तक सोते रहेंगे, जल्दी जगेंगे नहीं, भजन साधन करेंगे नहीं, भगवान कभी नहीं बंधेंगे। भगवान को बांधने के लिए हमारा प्रयास, ये हमारी ओर से एक उंगली। जैसे जैसे रस्सी जो होती है ना, ऐसे जब बांधते हैं तो एक यहां से एक वहां से, तो हमारी ओर से क्या होना चाहिए? भगवान को बांधने का प्रयास, साधना, और भगवान की ओर से कृपा। ये साधना और कृपा जब मिलती है तब भगवान बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम केवल साधन के बल पर भगवान को प्राप्त करेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। साधना के साथ साथ कृपा भी होनी चाहिए। तो साधना करनी चाहिए रात दिन, भगवान के नाम का जप, श्रवण, कीर्तन, और इसके साथ साथ भगवान और भक्तों की कृपा होनी चाहिए, कृपा की याचना करनी चाहिए। हे राधे आप हम पर कृपा कीजिए, हे कृष्ण कृपा कीजिए। और कृपा मांगने से ही हृदय कोमल होता है, नम्र होता है, नहीं तो मात्र साधना करते करते अहंकार आ जाता है। तो साधना और कृपा जब ये दोनों मिलेंगे तब जाकर कृष्ण बंधेंगे। तो यहां पर पूतना ने, बिचारे ने बहुत साधना की है, बहुत मेहनत की है, ये रूप बदलना होता है कि नहीं? रूप बदलने में कितना मेहनत होता है। हमारा जो स्वाभाविक रूप होता है उस रूप को बदलकर ब्यूटीफुल बनने के लिए, मान लो कुछ लोग लिपस्टिक करते हैं, ये करते हैं, साड़ी पहनते हैं, यहाँ टांगते हैं, यहाँ पाँव में, आगे पीछे सब जगह पर, फिर जाते हैं किसी फेस्टिवल में तो थक जाते हैं कि नहीं आप ये सब पहन कर? स्वाभाविक स्वरूप को छोड़कर और सब कुछ करने में थकना, थक जाते हैं, मेहनत होती है। पूतना ने भी मेहनत की है, भगवान पूतना के हाथ में है, और पूतना कह रही है छोड़ छोड़, परंतु भगवान छूटने का नाम नहीं ले रहे। तो समय निष्पीड्य माना मर्मणि, पुतना के मर्म स्थान फटने लगे। पुतना के जो कोमल मर्म स्थान थे वहां से शक्तिहीन हो गई। अल्वाचार्य जी कहते हैं कि पुतना ये जितने बालकों का प्राण पी थी उनके मर्म स्थान में स्थित था और भगवान ने मर्म स्थान से सभी बालकों के प्राण को पी लिया, उसके मर्म स्थान तड़पने लगे, कांपने लगी। और इस प्रकार भगवान ये पूतना कर रही है छोड़ छोड़, और भगवान पूतना के प्राण को पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान अब पूतना के प्राण को पीने की तैयारी, पूतना की चेतना धीरे 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 जा रही है। अर्थात अब पूतना अपने जो नकली रूप बनाकर आई है उस रूप को बनाने में समर्थ नहीं रही, और अब पूतना का जो वास्तविक स्वरूप राक्षसी का स्वरूप है धीरे 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 प्रकट होने जा रहा है। पूतना ने सोचा कि यहां पर यदि प्रकट होगा तो ये लोग हल्ला मच जाएगा, इसलिए नंद बाबा के घर से बाहर निकल गई, वहां से दौड़ने लगी पूतना। और भगवान श्री कृष्ण उसके प्राण को पीते जा रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते पूतना का शरीर विकराल हुआ। और भगवान ने देखा कि इनका लंबा चौड़ा शरीर है, और पूतना दौड़ते 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 जब ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर कोई न था, कोई हानि न हो सके, ऐसे स्थान पर जाकर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के सारे प्राण को पी लिए, और जैसे आकाश से पहाड़ गिरता है वैसे पूतना आकाश से नीचे गिर गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की
जय,
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा
भगवान के द्वारा पूतना का वध हुआ है।
हरे राम हरे,
आज भगवान ने पूतना को मारा है।
राम राम हरे हरे,
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
राम
राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग उन्मुक्त भाव से नाचे, बिना शर्माए लाज
कृष्णा
छोड़ कर नाचे।
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे
श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे
रसिक रसीलो छेल छबीलो गुण गर्भीलो श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्णा जय कृष्णा
उदारिणी श्री राधे
रस विस्तारिणी श्री राधे
नव नव रंगी नवल त्रिवंगी श्याम स्वंगी श्री कृष्णा
नव रंगी नवल
हाँ जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा सभी लोग प्रेम से नाचिए
कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्णा
प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे
प्राण प्यारी रूप उजारी अति कुमारी श्री राधे
मैन मनोहर महामोदकर सुंदर वरतर श्री कृष्णा
मैन मनोहर महामोदकर सुंदर वरतर श्री कृष्णा
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
शोभा श्रेणी मोहा मेनी कोकिल बेनी श्री राधे
शोभा श्रेणी मोहा मेनी कोकिल बेनी श्री राधे
कीर्तिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा
कीर्तिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
चंद्रावदनी कुंडारदनी शोभा सदनी श्री राधे
चंद्रावदनी कुंडारदनी शोभा सदनी श्री राधे
परम उदारा प्रभय पारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा
परम उदारा प्रभय पारा
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा हंसागमनी राजत रमनी क्रीडा कमनी श्री राधे
हंसागमनी राजत रमनी क्रीडा कमनी श्री राधे
रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
कंचन बेली रसवेली अति अलबेली श्री राधे
कंचन बेली रति रसवेली अति अलबेली श्री राधे
सब सुख कागर सब गुण यागर रूप उजागर श्री कृष्णा
सब सुख कागर सब गुण यागर रूप उजागर श्री कृष्णा
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे सभी लोग प्रेम से नाचिए जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
रमणी रम्या तनु तम्या गुण आगम्या श्री राधे
रमणी रम्या तरुण तम्या गुण आगम्या श्री राधे
धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्णा
धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्णा
जय राधे जय राधे राधे
जय
राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
सत्यलादिनी अति प्रिय वादिनी पुर उन्मादिन श्री राधे अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्णा
अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्णा
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिया स्वामिनी श्री राधे
राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिया स्वामिनी श्री राधे
हरे हरे हरि हरि हरे हरे हरि हरि हरे 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 श्री कृष्णा
हरे 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 श्री कृष्णा
हरे 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 श्री कृष्णा
हरे 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 श्री कृष्णा
हरे 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 श्री कृष्णा
हरे 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 हरे
हरे हरे हरि हरि हरे हरे हरि हरि हरे हरे हरि हरि श्री कृष्णा
हरे 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 हरि हरे हरे हरि हरे
हरे हरे हरि हरि हरे हरे हरि हरि हरे हरे हरि हरि श्री कृष्णा
हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण चंद्र भगवान की गाय गौर प्रेमानंदे
हरि हरि।
तो इस प्रकार पुतना के प्राण को नष्ट किए एवं प्रभावापि सा भगवता स्तन द्वारा प्राण आकर्षण मात्रेण मारित इति भगवन महात्म्यम प्रदर्शी यश्यन तदा आकृष्यमाण प्राकृत शब्दम महात्म्यम आह तस्या इति। गोस्वामी गिदर जी कहते हैं कि अब अगले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया तो पूतना के मुख से जोर से आवाज निकली, मरते मरते पूतना चिल्लाई, तो पूतना के चिल्लाने का आवाज पूतना के चिल्लाने का क्या प्रभाव हुआ इसका वर्णन 19वें श्लोक में 12वें श्लोक में करते हैं। तस्या स्वनेन अति गभीर रम्हसा साद्रीर मही योश्च चचाल सग्रहा रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुक्षितो व्रज निपात शंकया। पूतना जब बहुत चिल्लाई और उस चिल्लाने का आवाज अति गंभीर बड़ा भयंकर था आवाज, और रमहंसा बड़े वेग से पूतना चिल्लाई, ऐसे मरते मरते नहीं, मर रही थी परंतु वे आवाज बड़े वेग से आया और उस आवाज से उस आवाज के प्रभाव से आद्री आद्री माने पहाड़ आद्री मही द्यो चचाल सग्रहा, उस पूतना के मुख से जो आवाज निकला उसे पहाड़ पृथ्वी अंतरिक्ष और ग्रह ये सब लोग डगमगाने लगे और साथ ही साथ रसा दिशश्च प्रतिने धीरे जना, और पूतना के वह चिल्लाने की आवाज 14 लोकों में पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, दसों दिशा में वह आवाज पहुंच गई। पेतुक शितो व्रज निपात सग्रहा, और ब्रजवासियों को लगा लगता है वज्रपात हुआ और प्रलय होने वाला है। पूतना की आवाज को सुनकर सबको प्रलय की बात याद आई। निशाचरितम व्यतितत सकाव्यसुर व्यादाय केशान चरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूप मास्तिता वज्राहतो वृत्त ईवा पतन रिपन। बहुत सुंदर कहते हैं निशाचरी इत्थम भगवान श्री कृष्ण उस पूतना को लेकर गोष्ठे अपने घर से बहुत दूर चले गए। भगवान ने सोचा यहां पर गिरेगी तो कितने सारे बिल्डिंगों को गिरा देगी, जान हानि होगी माल हानि होगी, इसलिए भगवान पूतना को दूर लेकर जा रहे हैं। परंतु सबसे पहले यह देखिए कि सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में पूतना को पूतना नहीं कह रहे हैं, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पूतना को निशाचरी कह रहे हैं। निशाचरी का अर्थ क्या होता है? निशायाम चरती इति निशाचरी। निशा का अर्थ होता है अंधेरा रात, और चर का अर्थ होता है विचरण करना, स्त्रीलिंग भी होता है पुलिंग भी होता है, निशाचरी और निशाचर। जो निशा में जो रात का रात को विचरण करती है उसे निशाचरी कहते हैं, और जो पुरुष रात को विचरण करते हैं उसे निशाचर कहते हैं। पुतना को निशाचरी कहा गया। रात को जो विचरण करती है उसे निशाचरी कहते हैं। वास्तव में रात जो है सोने के लिए होती है, विचरण करने के लिए नहीं। और हमारे बॉम्बे जैसे शहरों में तो रात को ही विचरण शुरू होता है। ऑफिस से जब पतिदेव आते हैं बेचारे थके मांदे, तो ये कहते हैं चलो घुमाने लेकर जाओ, फिर रात को निकलते हैं। परंतु शास्त्र कहता है कि जो रात को विचरण करते हैं वे तो राक्षस है, निशाचरी है। तब माताएं कह सकती हैं तो पति दिन भर तो ऑफिस में होते हैं, रात को विचरण न करे तो क्या करे, संडे को छुट्टी होती है ना, एक वीक में एक दिन, और विचरण करना है तो मंदिरों में। तो जो रात को सोना चाहिए विचरण नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधुओं को सवेरा पसंद होता है और जो डाकू चोर होते हैं असुर होते हैं उसे अंधेरा पसंद होता है, क्योंकि काले काम अंधेरे में ही होते हैं, अच्छे काम सुबह होते हैं और बुरे काम रात को होते हैं। तो जो रात को विचरण करते हैं वे असुर माने जाते हैं, सुबह विचरण करना चाहिए। और इसका यदि तत्व से अर्थ लिया जाए, ये तो हुआ बाहरी अर्थ, निशायाम चरती इति निशाचरी, जो निशा में जो अंधेरे में विचरण करे उसे निशाचरी कहते हैं। हमारे वेदों में अज्ञान की तुलना अंधेरे के साथ दी गई है, अज्ञान को अंधेरा कहा गया है, इसलिए इस दूसरे शब्दों में जो अज्ञान में विचरण करता है उसे भी निशाचरी कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है। जो अज्ञानी है उसे भी निशाचर कहते हैं। खैर जो भी हो, सुखदेव गोस्वामी पुतना को निशाचरी कह रहे हैं। कहते निशाचरी इत्थम हे परीक्षित, निशाचरी पुतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि उसके प्राण ही निकल गए। व्यसु व्यदाय, व्यसु माने प्राण और व्यादाय माने निकल गए। और केशान चरणों भुजो अपि, और उसके बार बाल पैर और भुजाए प्रसार्य गोष्ठे सभी दिशाओं में फैल गए। गोष्ठे निज रूपम आस्थित, निज रूपम पुतना अपना निज रूप, पुतना का निज रूप कौन सा था, ये राक्षसी का, और बनावटी रूप कौन सा था, गोपी का। तो भगवान के प्रहार के कारण, कृष्ण के मारने के कारण पुतना अपने निज रूप में आ गई। अब विचार करो, पुतना अपने निज रूप में आ गई तो कितनी लंबी चौड़ी होगी। कहते हैं पुतना बहुत लंबी चौड़ी, पुतना का शरीर 6 कोस लंबा था। 6 कोस माने 12 माइल माने 18 किलोमीटर। पुतना का शरीर यहां से हर की पौड़ी कितना है, नहीं पता है, 7। यहां से हर की पौड़ी मात्र 7 किलोमीटर है। तो यहां से हर की पौड़ी तक तो पुतना का पांव था, बाकी धड़ और मस्तक तो आगे था। एक आचार्य फिर उसका साइज बताते हैं, मैं आपको बाद में कहूंगा। तो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा पुतना का शरीर था और ये मूल शरीर में आ गई। तब भगवान उसे गोष्ठे गोष्ठ में आकर वे पड़ गिर गई। गोष्ठे अपतन, पतन का होता है गिरना। तो वंशीधर और जीव गोस्वामी दोनों एक मत दे रहे हैं कि गोष्ठ में ही भगवान ने उसे क्यों गिराया, भगवान ने गिराया, भगवान ने देखा कि अब गोष्ठ आया है वहां पर गिराया। तो कहते गोष्ठे लक्षणिया तत्समीप देशे गोह अर्थ अवरोधन स्थले नतु जनवासे। गोष्ठे अपतन, भगवान श्री कृष्ण ने पुतना को गोष्ठ में अपतन गिराया। तो कहते हैं गोष्ठ लक्षणिया तत्समीप देशे गो दोहन अर्थान इति स्थले। ये गोष्ठ क्या होता है, गाय को दोहने का स्थान, जहां पर गाय को दुहा जाता है उसे गोष्ठ कहा जाता है। तो आप कहेंगे हमारे गांव में भी गोष्ठ है, परंतु वो तो छोटा सा है, ये 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी। हमारे गांव में गोष्ठ है, छोटा सा है, लेकिन गांव में गाय कितनी है? 3, 5, 10, 25, 50, ये 9 लाख गाय थी। गोष्ठ भी उतना बड़ा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण गोष्ठ में इसलिए लेकर गए क्योंकि नतु जनवास है, क्योंकि वहां पर जनवास नहीं था, क्योंकि लोगों के ऊपर गिरती तो बेचारे मरकर चूर्ण हो जाते। इसलिए कृष्ण ऐसे स्थान पर पूतना भाग रही थी, और ऐसे स्थान पर जब पहुंची तब कृष्ण ने ऐसे गोष्ठ के स्थान में गिराया। और कैसे गिराया? तो वज्र आहत वृत इव अपन रिप, जैसे इंद्र के वज्र के द्वारा घायल होकर वृत्रासुर पृथ्वी पर गिर गया, वैसे पूतना गिरी। वृत्र का अर्थ होता है वृत्रासुर। अब देखिए, सुखदेव गोस्वामी दसम स्कंध की कथा कर रहे हैं और छठे स्कंध के वृत्रासुर को याद कर रहे हैं। इस श्लोक में वित्र इव वृत्रासुर के समान पूतना पृथ्वी पर गिर गई। संक्षिप्त में सुन लीजिए, वृत्रासुर एक बार इंद्र ने बृहस्पति का अपराध किया और बृहस्पति के चले जाने से इंद्र स्वर्ग से च्युत हो गया। ब्रह्मा जी के पास गया, हमें स्वर्ग वापस दिलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा जब तक गुरु नहीं आएंगे तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा, और बृहस्पति जल्दी आ नहीं सकते हैं। जब तक तुम्हारे गुरु बृहस्पति नहीं आ जाते हैं तब तक तुम्हारे छोटे भाई त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो। इंद्र ने कहा ये त्वष्टा तो मेरा छोटा भाई है, भतीजे को गुरु बनाना चाहिए। कहा गुरु छोटा, उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता है, ज्ञान और भक्ति से बड़ा होता है। ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने अपने भाई त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने नारायण कवच प्रदान किया, इंद्र ने स्वर्ग को जीत लिया और प्रतिदिन विश्वरूप के द्वारा यज्ञ होते थे। परंतु विश्वरूप के 3 मुख थे, 3 सिर थे, और प्रतिदिन इंद्र अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विश्वरूप के द्वारा यज्ञ कराता था। एक दिन की बात, विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे, इंद्र चुपके से आए, देखा तो विश्वरूप के 3 मस्तक थे, 2 मस्तक से देवताओं को आहुति दे रहा था, देवताओं की शक्ति बढ़ा रहा था, परंतु 1 मस्तक से असुरों की शक्ति बढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि विश्वरूप की जो मां थी वह असुर कुल से थी, और ये असुर लोग विश्वरूप के मामा लगते थे, और भांजा का प्रेम मामा के प्रति होता ही है। जैसे छुट्टियों के दिन होते हैं तो तुरंत भांजे मामा के घर पर जाते हैं, हम भी जाते थे, मामा के प्रति प्रेम होता है। तो 2 मस्तक से देवताओं को आहुति, 1 मस्तक से असुरों को। इंद्र को पता चलते ही विश्वरूप के अपने तलवार से 3 मस्तक काट दिए, और उनके पिता त्वष्टा को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है। तुरंत एक यज्ञ किया, इंद्र शत्रु विवद्वस्व, हे इंद्र के शत्रु प्रकट हो, प्रकट हो। परंतु श्लोक में मंत्र में कुछ गड़बड़ होने के कारण इंद्र का नहीं समस्त देवताओं का शत्रु वृत्रासुर प्रकट हुआ, भयंकर असुर जो अपने शरीर से पूरे आकाश को वृत कर लिया, इसलिए उसका नाम ही हो गया वृत्रासुर। और फिर यह असुर सभी देवताओं को विध्वंस करने लगा, मारने लगा। तब दधीचि ऋषि की हड्डी से बने हुए वज्र को लेकर इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने लगा, और अंत में वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र मुझे मार डालो। उस समय इंद्र ने अपने वज्र से, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 1000 वर्ष तक इंद्र वज्र के द्वारा वृत्रासुर की गर्दन को घिसता रहा। 1000 वर्ष के बाद वृत्रासुर की गर्दन से सिर अलग हुआ, धड़ से सिर अलग हुआ, और वृत्रासुर जैसे पहाड़ गिरता है वैसे गिरा। तो यहां पर वह प्रसंग याद करा रहे हैं परीक्षित, मैंने जो सुनाया था वृत्रासुर का प्रसंग, उस वृत्रासुर की तरह व्रजा हतो वृत्त इवा पतन नृप। हे नृप, वृत्रासुर की तरह यह पूतना पृथ्वी पर गिरी है। देखिए वृत्रासुर का दृष्टांत देकर सुखदेव गोस्वामी से हम यह जान सकते हैं कि किसी भी वस्तु को समझाने के लिए पूर्व में जो दृष्टांत दिए हैं उसे दूसरी बार दे सकते हैं, समझाने के लिए दृष्टांत हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु आप पूतना वध की कथा में दूसरे और सब कथा क्यों करते हैं, तो हमें तो आज बहुत आनंद हुआ सुखदेव गोस्वामी स्वयं करते हैं। क्लियर लिखा है वज्रा हतो वृत इवा पतन रिप, ये सुखदेव गोस्वामी की स्टाइल है। हर एक भक्त को अपनी स्टाइल नहीं आचार्यों की स्टाइल ही बतानी चाहिए। अब वित्रासुर की तरह पूतना गिरी, उसके बहुत सुंदर भाव है। जीव गोस्वामी कहते हैं वृत्र एव इति शरीरस्य बृहत्वात् अन्ते सद्गति प्राप्तेश्च। जीव गोस्वामी दो चीज बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी पूतना का कंपेरिजन वित्रासुर के साथ क्यों कर रहे हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि वित्रासुर का शरीर बहुत लंबा चौड़ा था और पूतना का शरीर भी लंबा चौड़ा था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पूतना का कंपेरिजन वित्रासुर के साथ कहते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो जीव गोस्वामी कह रहे हैं हृदय से प्रसन्न करने वाली, क्या कहते हैं, कहते हैं वृत्त इव इति वित्रासुर का दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अंते सदगति प्राप्तश्च। क्योंकि वित्रासुर इंद्र के द्वारा मर गया परंतु मरने के बाद सदगति प्राप्त किया, वैसे ही यहां पर पूतना मर गई है परंतु मरने के बाद सदगति प्राप्त करेगी, इसलिए वित्रासुर का दृष्टांत दे रहे हैं। देखिए एक एक बात समझने जैसी है। वल्लभाचार्य तो कुछ और ही कह रहे हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं वृत्रे हते त्रयो लोका स्वस्ता तथा पूतना वदे जाता इति। ये वित्रासुर के कारण तीनों लोक दुखी थे, भागवत में छठे स्कंद में कथा है। वित्रासुर के प्रकोप से तीनों लोक दुखी थे और वित्रासुर जब मर गया तो तीनों लोक प्रसन्न हो गए। अल्वाचार्य जी कहते हैं तो उसी प्रकार यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया तो त्रये लोका तीनों लोक प्रसन्न हो गए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वित्रासुर से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वित्रासुर की तरह इवा अपतन नृप पूतना गिरी है, परंतु इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन दे रहे हैं। नृप इति संबोधन, ये जो नृप है ये संबोधन है। किसी भी कथा कहते समय किसी का नाम लिया जाए, जैसे यहां 5 दिन से कथा चल रही है और आप सब सुन रहे हो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि विजय प्रभु आपने सुना, विजय प्रभु विजय प्रभु। अब सुनने ही आए हैं इतना दूर मुंबई से सुनने बैठे हैं, लेकिन जब बीच कथा में संबोधन लिया जाता है तब कुछ विशेष महिमा होती है। तो इस कथा में इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन दे रहे हैं नृप। तो जीव गोस्वामी कहते हैं नृप इति प्रहर्षात्। जीव गोस्वामी कहते हैं कि कथा कहते कहते अब ये पूतना आई थी और ये सब कर रही थी तो सुखदेव गोस्वामी बहुत दुखी थे और परीक्षित तो उससे भी दुखी थे, परंतु इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पूतना मर गई गिर गई और वित्रासुर की तरफ खड़ी नहीं होगी, तब कहते हैं कि नृपिति प्रहर्षात्, हर्ष माने आनंदित होने के कारण सुखदेव गोस्वामी पूतना के मरने के कारण बहुत आनंदित हैं और राजा भी बहुत सुखी हैं आनंदित हैं, तो आनंद से कह दिया नृप मर गई। कहते हैं ना हम कभी बोलते बोलते देखा ना कृष्ण मेदा मार डाला, बीच में नाम लिया जाता है। तो वैसे बोल दिया कि नृप देखो ना मर गई है, हर्षित होकर नृपिति प्रहर्षा। परंतु वल्लभाचार्य जी कहते हैं नृपिति संबोधनम महत्वेन विश्वासार्थ, कहते हैं कि हे राजन आपने यह चरित्र सुना, हो सकता है कुछ लोगों को इस पर विश्वास न हो कि इतना 6 दिन का बालक वित्रासुर जैसे असुरी को कैसे मारा होगा। हो सकता है संसार के लोग इस पर विश्वास न करें, परंतु यहां पर नृपिति महत्वेन विश्वासार्थम आप तो श्रद्धालु हो। हे राजन हे नृप आप महान हो, आप श्रद्धालु हो, इसलिए इस चरित्र के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास होगा और इस चरित्र को आप यथार्थ रूप में समझ रहे हो ये मैं जानता हूं। यह कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नृप संबोधन दिए हैं। तो इस प्रकार पूतना गिरी है, भगवान श्री कृष्ण पूतना के स्तन के ऊपर खेल रहे हैं और फिर अब व्रज के रहने वाले सभी लोग, पूरा भूमि कांप गई और जोर से आवाज होने लगा जैसे वज्रपतन हो गया। और जब पूतना गिर गई तो सब व्रजवासी अपने अपने घर से निकले और अपने अपने घर से निकलकर जब इस गोष्ठ के स्थान पर पहुंचे तो आश्चर्यचकित हो गए। तो व्रजवासियों का आश्चर्य क्या था, कौन सा दृश्य, किस प्रकार से उन्होंने दृश्य देखा जिससे हृदय में आश्चर्यता उत्पन्न हुई, ये कथा आने वाले सत्र में सुनाई जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।